श्री हरि द्वितीयो अंकः पंचवटी प्रवेशः निपथ्ये स्वागतं तपोधनायाः ब्रज तत प्रविशत्यध्व गणेशा तापसी अये मलदेवता फलकुसुम गर्भेण पल्लवार्धेण दुरान्मामौ उपतिष्ठते प्रविश्वे बलदेवता अर्घ विक्रिय श्लोक नंबर एक पृष्ठ संख्या 118 अथ इच्छा भोग्यम वनम मिदम मयामि सुदीवस सतां सद्य संगम कथमपि पुण्येन भवति तरुक्षाया तोयम् यद्यपि तपसाम योग्यमसरम् फलम् वा मूलम् वा तदपि न पराधीनम् इह वह तापसी
केवल उच्यते
हिंदी पर्दे के पीछे स्वागत है तपस्विनी का। तदनंतर पथिक के रेस को धारण की हुई तपस्विनी प्रवेश करती है वृंदवन तापसी। अरे वन देवता अर्थात वन की अधिष्ठात्री देवी वृंदवन फल और फूल से युक्त कोमल फिसले से रख कर दिए गए अर्घ से दूर से ही मेरा स्वागत कर रही है। प्रवेश करके वन देवता पूजा की सामग्री बिखेर कर यह वन आपके लिए इच्छा अनुसार अर्थात बेरोक टोक उपयोग के योग्य है। यह अर्थात आज का दिन मेरे लिए शुभ दिन है क्योंकि सज्जनों का सज्जनों के साथ मिलन किसी किसी तरह पुण्य से होता है। वृक्ष की छाया जल और जो भी कुछ तपस्या के अर्थात तपस्विनी या तपस्विनी के भोजन अर्थात मिल है वह भी यहाँ आपके लिए पराधीन नहीं है। सरदार निपत्ते पर्दे के पीछे तपोधनाया तपस्या ही धन जिसका उसका तपस्विनी का अद्भुत गणेशा पथित के वेश को धारण की हुई तापसी तपस्विनी वन देवता वन की अधिष्ठात्री देवी फल कुसुम गर्भेण फल एवं पुष्प है मध्य में जिसके ऐसे फल एवं पुष्प से युक्त पल्लव धारण कोमल समय से रख कर दिए गए अर्घ से उपतिष्ठे पूजा कर रही है स्वागत कर रही है। अर्घम पूजा की सामग्री को विक्रिय बिखर कर देकर टीका निपथ्ये इति निपथ्ये वेशभूषा परिग्रह स्थान कुशील वकु कुटुम्बस्य स्थिलीम निपथ्यमस्य ते इत्युक्त्वात् जवनिका परिक्षणम् नटवेशभूषा परिग्रहणम् स्थानम् निपथ्यम् उच्यते तपोधनाय तपः तपस्या एव धनम् सम्पत्तिर्यस्य तस्याः अध्वगवेशाम् अध्वनि मार्गेण गच्छन्तीति अध्वगाः पथिकाः तेषाम् देश निपथ्यम् इव वेशो यस्याः सा पथिकवेशधारणित्यर्थः तापसी तपस्विनी बलदेवता अधिष्ठात्री देवी फल कुसुम गर्भेण फलानि पुष्पाणि प्रसूतानि च गर्भ आभ्यन्तरे यस्मिन् तेन फलकुसुम युक्तेन इत्यर्थः फलवाद्येन फलपल्लवैः कोमलकिसलैः कल्पितेन अनेन उपतिष्ठते पूजयति स्वागतम् विदधात् इत्यर्थः। अर्घ्यम् मधु पकारिकम् पूजा द्रव्य विकीर्य विशिष्ट तापसीम प्रतीति से सह टिप्पणी इस अंक में वर्णित घटनाओं का स्थान है जनस्थान जनस्थान दंडकारण्य का एक भाग है। प्रथम अंक तथा द्वितीय अंक की घटनाओं के बीच पूरे 12 वर्षों का अंतराल है। इन 12 वर्ष की घटनाओं की सूचना देने के लिए ही द्वितीय अंक के आरंभ में विस्कम्भक का कल्पना की गई है। पर्दे के पीछे से वन देवता का तापसी के लिए कथन है इससे तापसी का प्रवेश सूचित तो होता है। इसे चूलिका नामक अर्थोपक्षेपक कहते हैं। चूलिका का लक्षण अंतर वर्ज एकांत चूलिका विक्रिय विखेर कर देकर
प्लस
अन्वय इदं वरं वा यत् इच्छा भोग्यम् अस्ति अयं मे सुदिवसः हे सतां सद्भि संगम कथमपि पुण्येन भवति तरुक्षाया तोयम् यदपि तपसा न योग्यम् अशनम् फलम् वा मूलम् वा तत् अपि इह वः पराधीनम् न शब्दार्थ इदम् यः वनम् वन वह आपके लिए यथेच्छा भोग्यम् इच्छानुसार अर्थात देरोक्तोक उपभोग के योग्य अस्ति है अयम् यह आज का दिन मेरा या मेरे लिए सुदिवस शुभ दिन है क्योंकि सकाम सज्जनों का सब ही सज्जनों के साथ संग मिलन कथमपि किसी किसी तरह अर्थात पुण्येन पुण्य से भवती होता है तरुक्षाया वृक्ष की छाया तोयम जल यत जो अपि भी तपसाम तपस्या के योग्यम योग्य लायक अनशन भोजन फलम फल वा अथवा मूलम मूल कंद वा यह विकल्पार्थ है तत वह अपि भी इह यह वह आपके लिए पराधीनम पराधीन न नहीं है ठीक है यत इच्छा भोग्यमिति इदम् एतत अद्युत निकम इत्यर्थ वनम अरण्य वह जिस्माकम इति विनयोक्ति यथेच्छा भोग्यम यथेक्षम यथारुचि इत्यर्थ भोग्यम सेवनीयम संकोचम विहाय सेवनम इत्यर्थ अस्तिति क्रियासे सह अयम एषः प्रवर्तते मानैति यावत् मे मुम सुदिवसः भवत्या समागता सुदिवस इति जिज्ञासायाम याम उत्तरयति हि यत सकाम सज्जनानाम सद्धि साधि संगम संगम कथमपि कथंचित कदाचित यावत पुण्येन सुकृतेन भाग्येन इत्यर्थ भवति जायते एतेन सज्जन संगते दुष्प्रत्वम सुचितम तरुच्छाया तरोः वृक्षस्य छाया अनातपः अत्र जातादेकं वचनान्तेन एकवचनान्तेन समासः तरुणाम छायति विग्रहे छाया बाहुल्ये इति सूत्रेण नपुंसकत्वो प्रसक्तिः तोयम् जलम् यद्यपि यत्किञ्चिदपि इत्यर्थ तपसाम् तपस्यानाम योग्यम् उचितम् असनम् भोजनम् किञ्च तदेवम् निर्थलोति फलम् वा अथवा मूलम् कण्डम् येति विकल्पे तदपि एतत् सर्व इत्यर्थ इह अत्र युष्माकम् पराधीनम् अन्यातम् न वर्तते एतत् सर्व स्वकीयम् एव विद्युति भावः अर्थान्तरन्यासलङ्कारो शिखरी छन्दः टिप्पणी भोग्यम् भोक्तु योग्यम् इति भोग्यम् भुज प्लस यत धातु विभक्ति कार्यम अस नम अस लूट विभक्ति कार्यम इस श्लोक में सतान सद ही इस सामान्य वाक्य में के द्वारा विशेष का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है इसमें प्रयुक्त छंद का नाम शिखरणी है छंद का लक्षण रसई रुद्रक्षिणा है यमनम सवलाह गह शिखरणी श्लोक नंबर दो पृष्ठ संख्या 120 प्रियाया वृति विनय मधुरो वाची यमः प्रकृत्या कल्याणी गतिरनवगति परिचयः पुरो वा पश्चाद्वा कविदं विपर्याशीतरसं रहस्यं साधुना मधुषि विशुद्धं विजयते उपविशतः वन्द्योतम् काम पुनर अत्र भवति अवगच्छामि तापसी अत्रे अस्मि वन्द्योतम् आये अत्रेयि कुतः पुनरगृहागम्यते किं प्रयोजनो दण्डकारण्योपवनम् प्रचारः अत्रेयि हिन्दी अहि प्रेम पूर्ण व्यवहार विनय से मधुर वाणी में संयम स्वभाव से प्राणियों की मंगल कामना करने वाली बुद्धि अनिंदित परिचय ऐसा या पहले अथवा बाद में अपरिवर्तित अनुराग वाला निश्चल विशुद्ध सज्जनों का गुण रहस्य सबसे उत्कृष्ट है अनुय प्रिय प्रायाः वृति विनय मधुर वाची नियम प्रकृत्या कल्याणी मतिः अनवगतिः गीतः विपरीचयम् तत इदम् पुरः वा पश्चात् वा अनुपर्याय सितरम् अनुपधि विशुद्धम् साधुनाम रहस्यम् विजयते। प्रियया प्राया प्रिय प्राया अधिक प्रेम पूर्ण वृति व्यवहार विनय मधुर विनय से मधुर वाची वाणी में संयम प्रकृत्या स्वभाव से कल्याणी प्राणियों की मंगल कामना करने वाली मति बुद्धि अनवगत अनिंदित परिचय परिचय तत ए ऐसा इदम यह पुरह पहले वा अथवा पश्चात बाद में वा यह अवस्थानंतरम का सूचक है। अभिपर्य विपर्य शीतरसम अपरिवर्तित अनुराग वाला अनुपरी निष्फल निष्कपट विशुद्धम विशुद्ध साधु नाम सज्जनों का रहस्य गुण रहस्य विजय के विजय को प्राप्त होता है सबसे उत्कृष्ट है। टीका प्रिय प्रायेति प्रिय प्राया प्रायेण बाहुल्येन प्रिया अवेक्षिता सुप्सुपेति समासे एक विभक्ति अनेन प्रायस्य प्रप्रयोगः स्निग्धेति यावत् वृति व्यवहार विनय मधुर विनयेन नम्रतया मधुर मनोज्ञ वाची वचने नियम संयम प्रकृत्या स्वभावेन कल्याणे शिवा परेशा मंगलकाक्षिणीत्यर्थ मति बुद्धिम् अनवगतः अनिन्दितः कपटादिदोषरहितत्वा निन्दितः इत्यर्थ अग्रवा अथवा पश्चाद् अनन्तरम् सताम् प्राणस्य पूर्वम् अथवा ततः पश्चादम् इत्यर्थमेति विकल्पेद्यम् पदम् अभिपर्ययत् अन्तरसम् अनुपर्यसितः विपर्यास सम्प्राप्तः रसः अनुरागे यस्मिन् तत् तथोक्तम् एकरूपम् इति यावत् अनुपधि विपर्यायम् विशुद्धम् कपटादिदोषरहितम् इत्यर्थ साधुनाम् सज्जनानाम् रहस्यम् साधारणजनैः गेयम् निर्वचनीयम् चरितम् इत्यर्थ विषयते सर्वोत्कर्षेण वर्तते इत्यर्थ अत्रा प्रस्तुत प्रशंसा समुपच्यलङ्कार शिखारणी छन्दः टिप्पणी वृत्त कृतिन प्रत्यय विभक्ति कार्यम् नि नियम नि उपसर्ग यम धातु अपप्रत्यय वैकल्पिक पक्षे भय नियाम विभक्ति कार्यम् परिचय परि उपसर्ग ची धातु अपप्रत्यय विभक्ति कार्यम् रहस्यम रहसी भवम रहस्यम रहस्य यत प्रत्यय विभक्ति कार्यम तहा अप्रस्तुत सामान्य सज्जन चरित्र के द्वारा प्रस्तुत विशेष बंदोता का चरित्र का बोध होने से अप्रस्तुत प्रशंसा तथा सज्जन चरित्र की प्रति प्रिय प्राय वृति आदि कतिपय कारणों के उल्लेख से समुच्चय अलंकार है। इसमें प्रयुक्त छंद का नाम शिखारणी है। छंद का लक्षण रुद्रैः रसैः रुद्रक्षिणः यमन सबला वह शिखारणी शब्दार्थ अत्र भवम मतिम पूजनीय आपको अवगच्छामि समझती हूँ संधु कृत कहाँ से कुत कहाँ से प्रयोजनम किम किस प्रयोजन वाला किस लिए दंड कारण यो पवन प्रचार प्रचार दंड कारण से के उपवन में भ्रमण टीका वंदे वेति अत्र भवतीम आदरणीयम त्वाम अवगच्छामि जनामि को असि त्वम इति भावार्थ कुतः कस्मात् स्थानात् किम् प्रयोजनः किम् प्रयोजनम् कारणम् यस्य सः किमितम् इत्यर्थ दण्डकारणीयम् इत्यर्थ दण्डकारणस्य दण्डकवनस्य उपवने समीपारणीय प्रचारभ्रमणम् कस्मात् अत्र भ्रमरम् इति प्रश्नाशयः टिप्पणी का पुनरुक्तः संस्कृत में परिचय पूछने का यह एक सभ्य ढंग है। प्रचार प्र उपसर्ग क्षर धातु से भय प्रत्यय विभक्ति कार्यम श्लोक नंबर 3 पृष्ठ संख्या 122 अस्मि नगस्तस्य प्रमुखा प्रदेशे भूयान्तोद्गित विदो वसन्ति तेभ्यो अधिगन्तु निगम मतान्तरित्या बाल्मीकि पार्श्व इह पर्यतामि। बंद होता। यदाता वदन्ने अपि मनस्यत्मेव हि पुराण ब्रह्मवादिनं प्राच्येयतमहं ऋषिं ब्रह्म परायणा उत्सपासते तत्को अयम् मार्यासः प्रवासः अत्रै तत्र महानद्य प्रत्युह इत्येषः दीर्घ प्रवासो अङ्गीकृतः बन्द्योता कीदृशः अत्रै तस्य भगवतः येनापि देवता विशेषेण सर्वप्रकारादभृतम् त्यागमात्रके वयन्ति वर्तमानम् द्वारकम् द्वयम् उपनीतम् तत्खलु न केवलम् तस्य अपीतौ तिरस्या अप्यन्तकारणानि तत्त्व अन्योपस्नेहयति बन्धुवता अपि तयोर्नाम संज्ञानमस्ति अत्रै तय्यैव किल देवताय तयोः कुशलवातिति नामनि प्रभावस्याख्यतः बन्द्योत कीदृशः प्रवादः अत्रै तयोः कीलशः अस्यानि जिम्भकास्त्राणि जन्मसिद्धानिति बन्द्योत अहोनुभोषित्रमेतत् अत्रै तौ च भगवता वाल्मीकीनाम् भातृकर्मतः परिगृह्य परिपोषितौ रक्षितौ च निवृता च न कर्मणस्तत्यो अत्रै वर्जम् नितरास्तित्रो विद्या सावधानेन परिनिष्णापिता निष्कापिताः तदनन्तरम् भगवतैकदा एकादशे वर्षे छात्रेण कल्पेनोपनीय त्रैविद्याम् अध्यपितौ न त्रेताभ्याम् मतिदीप्तः प्रजाभ्यामस्तमदारिः साध्यः अध्ययनयोगोऽस्ति यत हिन्दी अत्रै इस प्रदेश में अगस्त्य आदि से बहुत ब्रह्म देवता निवास करते हैं। उनमें वेदांत विद्या पढ़ने के लिए वाल्मीकि के पास से यहाँ आ रही हूँ वन देवता, जबकि इसी समय तावत दूसरे भी मुनिजन वेदाध्ययन के लिए निश्चित रूप से प्राचीन ब्रह्म देवता प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि की उपासना करते हैं। तब आपका यह प्रदेश निवास क्यों, अर्थात ऐसी अवस्था में फिर आपके प्रदेश निवास का क्या कारण है? अत्रेयी, बाहर अध्ययन में बड़ा विघ्न उपस्थित हो गया था, अतः मैंने यह लंबा प्रवास स्वीकार किया है। अत्रेयी, वन देवता, कैसा विघ्न? अत्रेयी, उन भगवान वाल्मीकि को किसी विशेष देवता ने सब तरह से अद्भुत माता का दूध छोड़ने मात्र की आयु में वर्तमान दो बालक ला कर दिया। वे बालक केवल उनके ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के भी हृदय रूपी तत्व को शुद्ध करते हैं। वन देवता, क्या उन दोनों का नाम ज्ञान है, अर्थात उन दोनों के नाम मालूम है? अत्रेयी, ऐसा सुना जाता है कि उसी देवता के द्वारा इन दोनों का कुश और लोक या नाम तथा प्रभाव बतलाया गया है। वन देवता, कैसा प्रभाव? अत्रेयी, सुना जाता है कि उन दोनों को प्रयोग एवं संहार के मंत्रों के सहित जिम्भक अस्त्र जन्म सिद्ध है, अर्थात जन्म से ही प्राप्त है। वन देवता, ओह यह आश्चर्य है। अत्रेयी, वे दोनों बालक भगवान वाल्मीकि के द्वारा धात्री भाई दाई का काम करने के लिए स्वीकार करके पाले पोसे गए तथा संरक्षित किए गए। समाप्त चूड़ाकरण संस्कार वाले उन दोनों को देवत्रयी को छोड़कर अन्य तीन अनिच्छी वार्ता और दंडनीति विद्याएं सावधानी पूर्वक उनके द्वारा संपूर्ण रूप से पाली गई है। उसके बाद उन्हें भगवान वाल्मीकि के द्वारा 11वें वर्ष में क्षत्रियोचित विधि से यज्ञोपनयन संस्कार करके विद्या वेद पढ़ाई गई है। अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले इन दोनों के साथ हम लोगों का पढ़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि अस्मिन् प्रदेशे अगस्त्य प्रमुखाः भूयांसि उद्गिदम् विता वसन्ति तेभ्यः निमं अन्तरिद्याम् अधिगन्तुम् वाल्मीकि पार्श्वात् इह पर्यटामि। सरकार, अस्मिन् प्रदेश में अगस्त्य प्रमुखाः अगस्त्य आदि भूयांसि बहुत से उद्गिद प्रणव अर्थात सामवेद से एक भाग को जाने वाले ब्रह्मवेता बसंती निवास करते हैं तेभ्य उनसे निगमांत विद्या वेदांत विद्या को अधिगम तुम पढ़ने के लिए प्राप्त करने के लिए वाल्मीकि के पास से की है। यहाँ पर्यटानी भ्रमण कर रही हूँ आ रही हूँ। टीका अत्रेति स्वगम प्रयोजनम अधिगति अस्मिन् इति अस्मिन् एतस्मिन् प्रदेशे दंडकारणीय भागे अगस्त्या प्रमुखे अगस्त्यः कुम्भजः प्रमुखः प्रधानः एषः ते अगस्त्यादयः इत्यर्थ भूयांसः बहवः उद्गितः विद्वः ओम इत्येव तदम् उद्गितः उपासितः ओम इत्यक्षरम् परमात्मनो अभिधानम लोदिष्ठम इति इत्या परमिशन परिश्मन ब्रह्मणि उदगित दृष्ट कुर्वन्ति इति भावः वसन्ति निवसन्ति अगस्त्यभ्य अगस्त्य प्रमुखेभ्य निमग्नान्त विद्याम निगम वेदा तेषाम अन्ता चरम भागा उपनिषद इत्यर्थ तत् प्रतिपादिनाम विद्या ब्रह्म विद्या इत्यर्थ अधिगन्तुम् अध्येतुम् बालमिकिम् पार्श्वात् बालमिकिम् समीपात् इह अत्र पर्यटानि चरामि पुरा हि विद्या स्त्रियो अनुश्रूयते गृहे अभिधन्यो ब्रह्म विद्या निश्चयेति हारितो यमस्व स्त्रीणाम उपनयन संस्कारादि अधिकारम् निदर्शितम् अतो ब्रह्मवादिन्या अत्रेयं वेदाध्ययनं न विरुच्यते इन्द्रवज्रा वृतम् टिप्पणी उद्गित विद्या सामवेद में एक भाग उद्गित कहा जाता है। यज्ञ में भाग यह भाग उद्गता के द्वारा गाया जाता है। यद्यपि उद्गित शब्द सामवेद के एक भाग के लिए प्रयुक्त होता है तथापि यह इसका अर्थ सामान्य रूप से सामवेद भी किया जा सकता है। छंदोग्योपनिषद में उद्गित शब्द प्रणव के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। अतः उद्गित विद का अर्थ प्रणव के प्रति पद्य ग्रह का ज्ञाता भी किया जा सकता है। इस श्लोक में प्रयुक्त छंद का नाम है इंद्रवज्रा अर्थात छंद का लक्षण स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौगः सर्वदा पुराण ब्रह्मवादिनम प्राचीन ब्रह्मवेता अथवा सनातन ब्रह्मवेता ब्रह्म पारायणाय वेदाध्ययन के लिए प्रवास प्रदेश में निवास अध्ययन प्रत्युह जन्म बाधा दीर्घ प्रवास बहुत दिनों तक प्रदेश में निवास अंगीकृत स्वीकार किया गया है। देवता विशेषण विशेष देवता के द्वारा सर्व प्रकार भूतम सब बहुत कुछ बहुत तरह से अद्भुत सत्यन त्याग मात्र के माता का दूध छोड़ने मात्र वयसी आयु में द्वारकद्वयम दो शिशु उपनीतम लाए गए तिरस्क्राम पक्षियों के टीका बन देवेति पुराण ब्रह्मवादिनम पुराण अति प्राचीनम प्राचीनत्वात् प्रतितो विशेषज्ञश्च जो ब्रह्मणि वेदान ब्रह्मात्मा वा वदतीति उपदिशति ब्रह्मवादिं च तथोक्तम परायणाय ब्राह्मण वेदानाम इत्यर्थ परायणाय वेदाध्ययनाय जत्वा ब्राह्मण वेदानाम पारम अनंतम अत्र अन्यनम अयनम गमनम तस्मै सांगान वेदाध्ययनम धातुमित्यर्थ प्रवास सुदूर प्रदेशे अवस्थामनम अंगीकृतम स्वीकृत देवता विशेषण देवता प्रभेदेन सर्वकार अद्भुतम सर्व प्रकारेषु निखिल विषयेषु अद्भुतम आश्चर्यम जनकम स्तन त्याग मात्र के स्तन पयोधरे भवम जातम स्तनम क्षीरम तस्य त्याग परित्याग स एव मात्रा काल परिणाम यस्य तस्मिन् वयसि आयुषि बाल्ये इति यावत् द्वारकद्वयम् बालकद्वयम् उपनीतम् आल्य प्रदयतम् तिरस्याम् पक्षिणाम् तिरस्यामित्युपलक्षणम् सर्वविदप्राणिनाम् इति टिप्पणी प्राच्येतसम् वर्ण को प्रचेता कहते हैं। बाल्मीकि प्रचेता के बारहवें पुत्र थे, अतः उन्हें प्रश्वेतस कहा जाता है। प्रवास प्र उपसर्ग पूर्वक वश धातु से भय प्रत्यय विभक्ति कार्यम प्रवास वर्तमान विद्यमान वृत पलस स्थान पलस विभक्ति कार्यम सबदा अभी क्या वाक्य के पहले प्रयुक्त होने पर अभी का अर्थ होता है क्या नाम संज्ञानम नाम का संज्ञा ज्ञान आख्यातः बतलाया गया है सरहस्यानी त्रिलोक एवं संहार के मंत्रों के सहित या सर जुम्बक प्राणी जुम्बक नामक अस्त्र जन्म सिद्धांत जन्म सिद्ध है जन्म से ही प्राप्त है चित्रम आश्चर्य जनक टीका वंदेवेति अपिति प्रश्ने नाम संज्ञानम नामनोह अभिधानयोह संज्ञानम परिचय सरहस्यानी रहस्यैः प्रयोग सहस्त्र मंत्रैः सहितानि सरहस्यानि सोपकानि निसक्कानि जिम्भकास्त्राणि जिम्भकयन्ति जिम्भकोपलम् लक्षितानि निद्रावेश विस्तार दिवसान कुर्वन्ति शत्रूनिति तथा भूतानि जन्म सिद्धानि जन्मतः स्वभावतः सिद्धानि अधिगतानि आजन्म प्राप्तानित्यर्थ चित्रम् आश्चर्यकरणम् टिप्पणी सरहस्यानि अस्त्रों के प्रयोग छोड़ने तथा संहार वापस करने के मंत्रों को रहस्य करते हैं जिम्भकास्त्र जिम्भक अस्त्रों को छोड़ने पर शत्रु निद्रा के वशीभूत होकर जवाई लेने लगते हैं शब्दार्थ धात्री कर्मतः धात्री धाई दाई अर्थात नर्स का नाम कम करने के लिए परिक्रिया स्वीकार करके निवृत्त कर्मणों चौल कर्मणों कर दिया गया है चूड़ाकरण संस्कार जिनका ऐसे समाप्त चूड़ाकरण संस्कार वाले त्रैवर्ण ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद को छोड़कर परिनिष्ठापिता संपूर्ण से पढ़ा दी गई है छात्र छात्रोचित कल्पेन विधि से अति दीप्त प्रज्ञाभ्रम अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले टीका छात्री इदानीं तयोविशदं प्रभाव वक्तुं अवतारयति तारिति धात्री कर्मतः धात्र्याः उपमातुं कर्मतः क्रमेण कर्मणे अत्र चतुर्थे सर्वविभक्ति कष्टाशील उपमात्री क्रियेत्यर्थ परिगृह्य स्वीकृत्य अहम् अन्यो रूपमातुः परिचयाध्यात्मकं कर्म करिष्यामि इति स्वीकृत्य इत्यर्थ निवृत चौल कर्मणो निवृतम समाप्तम चौलम चूड़ाकरण रूपम कर्म संस्कार योस्तो चूड़ाकरण संस्कार संस्कृत त्रैवर्जनम त्रैवर्यू समानी यद्वा त्रया वर्जन वर्जनम यस्मिन् कर्मणि तद्यथा परिनिष्ठापिता सम्यक निष्पादिता परिपाटिता इति यावत् छात्रेण कल्पेन त्रयी नाम उपदिश्येन विधीनाम छात्रयोचिता विधिनानेन इत्यर्थ अदित्ति प्राज्ञाभ्याम अतिदीप्ता अतिप्रकाशिता अतित्यक्षयति यावत् प्रज्ञा बुद्धि सदस्विते इत्यर्थ सदस् देती बुद्धि प्रज्ञत्युक्ते ययोस्ताभ्याम अतिशीघ्रम ततो वार्था अबोध कुशलाभ्याम इत्यर्थ टिप्पणी धातृकर्मतः दाई दूसरे के बच्चों को खिलाती पिलाती तथा अति सावधानी से पालती पोसती है लव कुश की दाई का काम स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने संभाला है परिगृह परिउपसर्ग पूर्वक गृह धातु लव प्रत्यय प्लस विभक्ति कार्य निवृत प्लस वृत प्लस तथा प्लस समान कार्यादिकम चौल को ही चूड़ाकरण का तथा मुंडन कहा जाता है मनु के अनुसार यह संसार प्रथम अथवा तृतीय वर्ष होना चाहिए परिनिष्ठापिता परिनी प्लस था प्लस ऋचि प्लस कृतम प्लस काप प्लस बहुवचन श्लोक नंबर 4 पृष्ठ संख्या 126 वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां चतैव तथा जडे न तु खलु ततो ज्ञान सत्यं करोत्यपहन्ति वा भवती ही पुनर्भयानि देदः फलम् प्रतितज्यथा प्रभवती च शिशिम्बिम्बग्राहे मरणमृगादयः बन्धोऽसौ अयम मध्यन प्रत्युह अत्रेय अन्यश्च वंद्योता अथा परह कह अत्रेय अतिश ब्रह्मर्षिर एकदा मध्यनंदिन श्रवान अवनाय नदी समसान प्रपन्नः तत्र युग्मचारिणः क्रौञ्चयोरेकं व्याधेन विद्यमानं ददर्श आकस्मिन् प्रत्यभासां देवीं वाचमाम् अनुष्टुभेन छन्दसा परिणता मध्योद ऐरतत् यस्मिन् प्रभवत् भासां देवीं वाचमाम् निष्टुभेन छन्दसाः परिणता मध्योदयि एतत हिंदी आचार्य जिस प्रकार बुद्धिमान शिष्य को उसी प्रकार मंद बुद्धि शिष्य को विद्या प्रदान करते हैं वह उन दोनों के ज्ञान में न तो शक्ति पैदा करता है अथवा न विनष्ट ही करता है किंतु विद्या के फल में बहुत अधिक अनंतर होता है जैसे निर्मल मणि पर छाई बिंब ग्रहण करने में समर्थ होता है उस तरह मिट्टी आदि नहीं समर्थ होते वन देवता यह अध्ययन में विघ्न है अत्रेय दूसरा भी है वन देवता अच्छा दूसरा क्या है अत्रेय तत्पश्चात एक समय वे ब्रह्मर्षि मध्यकालीन स्नान के लिए तमसा नदी पर पहुँचे वहाँ उन्होंने साथ साथ विचरण करने वाली दो क्रौच नर और मादा पक्षियों में एक नर क्रौच को बहेलिया के द्वारा विधे जाते हुए देखा तब उन्होंने अकस्मात स्फुरित आविर्भूत तथा अनुसूत छंद में परिणत दिव्य वाणी का उच्चारण किया अन्वय गुरु यथा प्राज्ञे तथा एव जड़े विद्याम वितरति तयोः ज्ञाने न तु शक्तिम करोति वा अपहंती पुनः फलम प्रति भूयान भेदः भवति ही तथा यथा स्थिति ही मणि ही बिंबग्राहे प्रभवति तथा मृदादयहन प्रभवन्ति सबतार्थ गुरु आचार्य यथा जिस प्रकार जैसे प्राज्ञ बुद्धिमान शिष्य में अर्थात बुद्धिमान शिष्य को तथा उसी प्रकार एवं ही जड़े मंद बुद्धि शिष्य में अर्थात मंद बुद्धि शिष्य को विद्याम विद्या को वितरति प्रदान करता है तयोह उन दोनों के ज्ञाने ज्ञान को नतु न तो शक्तिम शक्ति को सामर्थ्य को करोति करता था है वा अथवा अपहंति विनष्ट करता है पुनः किंतु फलम प्रति फल के प्रति फल में भूयान बहुत अधिक भेद अंतर भवति ही होता है अतः वह यथा जैसे सुचि निर्मल मणि मणि बिंबाग्रह परछाई को करने में प्रभवती समर्थ होता है उसी प्रकार मृदादय मिट्टी आदि न ही प्रभवंती समर्थ होते हैं टीका बालकाभ्यां सहाध्ययनस्यानुपत्ति साध्ययति वितरतीति गुरुः अध्यापकः यथा येन प्रकारेण प्राज्ञे बुद्धिशालिनी तथा तेनैव प्रकारेण एव वितरते गुरुः निशिष्येषु न किञ्चित् भेदः आश्रयतः इति भेदभावः तयोः प्राज्ञजलयोः ज्ञाने शास्त्रार्थबोधो न तु न च शक्तिम् सामर्थ्यम् अवबोध सामर्थ्यम् इत्यर्थ येति
विकल्पे व्यापहन्ति
न विनाशयति प्राज्ञस्य न तु बुद्धिर्यस्य वर्धति न च बन्धबुद्धि विनाशयति पुनः किन्तु फलम् प्रति परिणाम प्रति शास्त्रार्थत्वात् बोधरूपम् फलम् प्रतीति भूयान् महान् भेदः अनन्तरम् विशेषः इत्यर्थ भवति जायते हीति गाढ़े निश्चय वाक्यालंकारे वा तत भेद भवनम यथायेन प्रकारेण निर्मल मणि हिरकादि बिंबग्राहे बिंबस्य प्रतिबिंबस्य बिंब तु प्रतिबिंबे श्यान मंडले बिंब फलाने बिंबिका फले बिंबग्राहे बिंबस्य प्रतिबिंबकस्य प्रभवति समर्थ्यो भवति तेन प्रकारेण मृदादय मृत्तिका प्रवृत्तयः न
प्रभवन्तीति वाक्यशेषः
अतो अत्र नायं गुरुः मृगादयः किन्वन्त अस्माकम् एव दोषः अत्र प्रस्तुत प्रशंसा यथा संचम उपमालंकार हरणी छंद टिप्पणी। इस श्लोक का भाव यह है कि अध्यापक एक ही क्लास में समान रूप से सभी विद्यार्थियों को पढ़ाता है, किंतु उनमें कुछ तो अति शीघ्र विषय को समझकर धारण कर लेते हैं और कुछ बार बार समझाने पर भी ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तेज विद्यार्थी को शीघ्र धारण करवा देने में तथा मंद को न समझने में अध्यापक का कोई पक्षपात नहीं है। इसी भाव के कुछ अन्य श्लोक भी हैं। क क्रिया ही वस्तुपहिता प्रसीदति, ख क्षीयते वलिश स्यापति सत्य क्षेत्र पतिता, कृषि नकालेह स्तंभ करिता वस्तुपगुण पेक्षते मुद्रा। एक थी वह यह अप्रस्तुत प्रशंसा यथा संख्य तथा उपमालंकार है। श्लोक में प्रत्येक छंद का नाम है शिखर हरिणी। छंद का लक्षण नमरस्लाग षड वैद हरिणिमता शब्दार्थ अध्ययन प्रत्युह अध्ययन में विघ्न मध्यन द्योषनाय मध्याकालीन स्नान के लिए अनुपन्न पहुँचे गए युग्मचारण जोड़े के विचरण करने वाले व्याधीन व्याध के द्वारा बहेलिया के द्वारा विधेयमान मानम विधेय जाते हैं आकस्मिकम प्रत्यभासाम अकस्मात स्फुरित अग्रभूत परिणाम परिवर्तित हुई। टीका मन देवेति अध्ययन प्रत्यूह अध्ययने पठने प्रत्यूह विघ्न विघ्नोनंतराय प्रतिवहितमर मध्यनन्दिन्नवसाय मध्याह्नानाय सर्वनम स्नानम अनुत्परपन्न प्राप्त स्नातुम गतः इत्यर्थ युग्मचारिणो हो युग्मनम मिथुनम चारिणौ तस्तयोः मिथुन भावेन स्थितयोः इत्यर्थ व्याधेन पुलिंदेन विघ्नमानम बाणेन निहन्यमानम आकस्मिक प्रत्यवसान भासम आकस्मिक अकस्मात समद्यपानम प्रत्ययोभासः प्रकाशो यस्मास्ताम् तथोक्तम् परिणाम जातपरिणामम् टिप्पणी। ब्रह्मर्षि जब ब्रह्मर्षि ऋषि ब्राह्मण ऋषि बन जाता है तब उसे ब्रह्मर्षि कहते हैं। इसी तरह ऋषि हुए क्षत्रिय को राजर्षि की संज्ञा दी जाती है। अनुप्रपन्न अनुप्र प्लस पद प्लस कत प्लस विभक्ति कार्यम विघ्नमानम व्याघ्र प्लस सानच प्लस विभक्ति कार्यम अनुष्टभेदेन परिणताम रामायण के अनुसार व्याघ के द्वारा कमार्थ क्रोच को बाण के विधा गया देख कर वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया। अकस्मात उनके मुख में अग्रिम श्लोक निकल पड़ा। श्लोक नंबर 5 पृष्ठ संख्या 128। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती हि समाः यत्रौञ्च मिथुना देवं मवधि काम मोहितं। वन देवता चित्रं नायद अन्यत्र नूतन छंद सामवतारः अत्रे तेन हि पुनः समयेन तं भगवन्तं अविर्भूत शब्दं प्रकाशं ऋषिं उपसंगम्य भगवान भूत भावनः पद्ययोः अनिरवयोत् ऋषिः प्रबुद्धोऽसि वागात्मनि ब्रह्मणि तदब्रूहि रामचरितम् अव्याहति योजि राक्षेह चक्षु प्रतिभू प्रतिभातुः अद्य कविरसि इत्युक्त्वा अर्हन्त हि अथ स भगवान् प्रातश्चेतस प्रथमम् मनुष्येषु शब्दशब्द ब्रह्मास्तादृशम् विवर्तम निहितासम रामायणं प्राणिनाय बंदेत हंत पंडित संसार अत्रे तस्मादेव हि ब्रवीमि तत्र महान अध्ययन प्रत्युहैति। बंदेत अयुज्यते अत्रे विश्रांतास्मि भद्रे सप्रत्य अगस्त्यम आश्रमस्य पंथानं ब्रूहि। बंदेत इतः पंचवतीम अनु प्रविशय गम्यतामनेन गोदावरी तीरेण अत्रि शास्त्रम् अप्येतत् तपोबलम् अप्येषाम पञ्चवटी अपि सरिद्धियम गोदावरी अप्यम गिरी प्रहस्त्रवर्णम अपि जनस्थान वन देवता त्वं वसन्ति पाशन्ति वन्देत तथैव तत्सर्वम् अत्रै हावत्से जानकी। हिंदी। हे व्याध, तू निरंतर बहुत वर्षों तक शांति को मत प्राप्त हो, अर्थात शांति का अनुभव न करो, क्योंकि तूने क्रंच पक्षियों के जोड़े में काम से मोहित एक नर को मार डाला है। वनदेव का आश्चर्य है, वेद में अन्यत्र छंदों का नूतन आविर्भाव हो गया। अत्रेय, तब उस समय आविर्भूत हो गया है शब्द रूप ब्रह्म का प्रकाश, जिसे ऐसे उस भगवान वाल्मीकि ऋषि के पास आकर प्राणियों को उत्पन्न तथा पालन करने वाले कमल योनि ब्रह्म बोले, हे ऋषि, तुम शब्द रूप ब्रह्म के विषय में ज्ञान हो गया है, अतः राम को राम के चरित्र को कहो, अर्थात रामचरित का वर्णन करो। आर्ष, ऋषि संबंधी तुम्हारी दृष्टि प्रतिहत प्रकाश वाली होकर चमके, तुम आदि कवि हो, ऐसा कह कर वे अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर उन भगवान प्रचेता पुत्र वाल्मीकि ने मनुष्य में सर्व प्रथम शब्द रूप ब्रह्म के अपूर्व रूपांतर रामायण नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। बन देवता, ओह, तब तो सारा संसार पंडित हो जाएगा। अत्रेय, यही कारण है कि मैं कह रही हूँ वहाँ अध्ययन में महान विघ्न है। बन देवता, ठीक है। अत्रेय, भली मैं विश्वास कर चुकी, अब अगस्त्य ऋषि के आश्रम को जाने वाले मार्ग को बदलाओ। बन देवता, यहाँ से पंचवटी में प्रवेश करके गोदावरी के इस किनारे में चली जाइए। अत्रेय, आंसू भरकर, क्या यह तपोवन है? क्या यह पंचवटी है? क्या यह गोदावरी नहीं है? क्या आप जलस्थान की देवता वासंती हैं? बन देवता, वैसा ही यह सब है जैसा कि आप पूछ रही हैं। अत्रेय, हाय बेटी जानकी। अन्वय, हे निषाद, त्वं शाश्वत ही समाह प्रतिष्ठा मम आगम सद यत्क्रंच मिथुनात काम मोहितम एकम अवधि। शब्दार्थ, हे निषाद, हे व्याघ्र, त्वं तुम तू शाश्वती निरंतरम बहुत समाह वर्ष बहुत वर्षों तक प्रतिष्ठा स्थिति को आश्रय शांति को मागम मत प्राप्त हो, यत क्योंकि जो कि क्रंच मिथुनात क्रंच पक्षियों के जोड़े से काम मोहितम काम से मोहित एकम एक को अवधि मारा है। ठीक है, मां निषाद इति, हे निषाद, निपिदंति ही निश्चितनंते अस्मिन् पाप निति निषादस्त संबुद्धौ। हे निषाद, व्याघ्र निषाद इत्यम शब्दो हो योगार्थे प्रत्युक्तम त्वं शाश्वती ही सनातनी ही निरंतरा वहनी रहिति भावः समा वर्षाणि चीरकालम इति भावः कालध्वनुः अत्यंत संयोगे इति द्वितीया प्रतिष्ठामः स्थितम आश्रय इष्टम इत्यर्थः शान्तिम इति यावत मागमः न प्राप्नोति चीरकाल पर्यन्तम् त्वं सुखम् न लभ्यते इत्यर्थः। मांगी लुंग इत्यनेन मांगी उपपदे लुंगन मांगे योगे इत्यागमे निषेधो भावत्व स्ववार्षः कविद्य दुष्य रक्षार्थ भवभूति भाव स्पर्शिन्याः त्वमगमः इत्यर्थ तु अमगम इति पदेऽर्थे विघ्नं स्वीकृत्य नास्ति मा लक्ष्मी पर्यन्तं तत्सम्बुद्धौ संबोधने हे अमः हे अलक्ष्मिकः निषादः स्वप्रतिष्ठा तुमागम इति व्याख्यातम ततु क्लिष्टम उपदेशित प्रेक्षितम यत यतो हि क्रौच मिथुनात क्रौच जुगलात काम मोहितम कामेन मोहितम काम सक्त चेतसम एकम रामायणम एकम क्रौचम इत्यर्थ अवधि हतम वानसी अत्र स्नेहोलंकारः अनुष्टुप छंदः श्रीविद्यासागर भट्टाचार्येण श्लोके इत्थमपि व्याख्यातो अस्ति यद्वा श्लोको वयम् रामायणस्य बीजभूतत्वेन व्याख्यायत तथा हि मालक्ष्मी निषादिकी अस्मिन् इति धनं मानसाद लक्ष्मीपतिः राम भगवतः रामस्य विष्णोः सम्भूतत्वात् सीतायाश्च लक्ष्मीरूपत्वादिति भावः यत यस्मात् त्वं क्रौञ्चं मिथुनात् मन्दोदरी रावणारूपात् राक्षसात् द्वन्द्वात् काममोहितम् एकम् रावणम् अवधी हतवानसि तस्मात् शाश्वतिः समाः वत्सरान् यावंस्तत्संसारम् इति भावः प्रतिष्ठामनित्यम् सुखाय विव्यक्तम् शक्तिम् मखण्डना नन्दम् इत्यर्थः आगमलभवम् भावार्थम् अभिभूतम् अव्यङ्गे कृतः इति न्यायात् प्रार्थनायामलिङ्ग अथवा ये अनिषादः निषादसदृशः सदृश्यार्थे नय वनवासित्वात् निषादबन्धुवाच्च रामस्य निषादतुल्यता क्रौञ्चमिथुनात् इति संकृतेन संकेतेन तारावलीनोचितना भातृपल्याम रुमायाम रमणायत्वात् तस्य काममोहितत्वम् वेदमित्यर्थ अपरञ्च नित्य राम सदयति ध्वंसयति लोकनातीमिद निषाधः रावणः तत्सम्बुद्धौ हे निषाधः रावणः यत यस्मादत्वम् क्रौञ्चमिथुनात् अल्पे भावार्थ क्रौञ्चित्युक्ते पञ्चाद्यसी क्रौञ्चः ततः स्वार्थे अणप्रत्ययेन क्रौञ्च इति सिद्धः तयोः मिथुनम् तस्माद् राज्यक्षय भवनम् सादिदुःखेन परम् कास्य अर्थः गादादस्त्री नपुंसकयुगलात् सीताराम रूपादित्यर्थ एकमकाममोहितम् पतितरतम् स्त्रीजनम् सीताम इत्यर्थ अवधिः हरिणादिनि बधतुल्यम अविरोधितम् दुःखम् प्रापितिन्वासिनीम् तस्माद् त्वम् शाश्वतिः समाः प्रतिष्ठाम शस्त्रे साहित्येन लोकस्थितिम् इत्यर्थः मायागमः न प्राप्नोति यचिरेण स्त्रियायाम् वर्युच्यते श्रियम् अस्वेति काव्यार्थ सुचितः यथा रामस्तया सीता विरहितः कृतः सा च सती राम विना कृता तथा त्वमपि स्वार्थाय स्वाद् विरहितो भव सा च त्वया विरहिताम् चिरम् योगशोकार्ताम् भूयादेति तु निर्गयितार्थ टिप्पणी मायागमः यः मांग होने के कारण अट का यागम नहीं होना चाहिए मानसान विद्वान व्याख्याकारों ने इस श्लोक का तीन अर्थ किया है निषाद के पक्ष में दूसरा राम के पक्ष में तीसरा रावण के पक्ष में राम के पक्ष में इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की जाती है हे मानसाद माँ लक्ष्मी निषिद्धार्थाश्मी न मानसाद लक्ष्मी पते रामस्तत् संबुद्ध अर्थात हे सीता रूप लक्ष्मी के निवास राम तुम सदा प्रतिष्ठा को प्राप्त हो क्योंकि तुमने क्रौंच कुटिल दुखदायी रावण के जोड़े में से काम मुग्ध रावण का बध किया है। रावण के पक्ष में इसकी व्याख्या इस प्रकार की जाती है हे निषाद नितराम साध्यति पिंडयति लोकनाति लोकानिति निषाद रावणस्तत्सम बुद्धौ हे निषाद रावण अर्थात दुखदायी रावण तुम कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त मत हो क्योंकि तूने क्रौंच दुख से पीड़ित क्रिस राम के जोड़े में से काम मोहित एक सीता को दुख दिया है। हे निषाद निषाद के पक्ष में इसका अर्थ है ही को अभिप्रेत प्रतीत होता है अन्य दो अर्थ खींचतान कर निकाले जाते हैं यही अर्थ ऊपर टीका आदि में दिया जाता है। यहाँ श्लेष अलंकार तथा अनुष्टुप छंद है। शब्दार्थ चित्रम आश्चर्यम वेद से अवतार अविर्भाव समय न समय से अविर्भूत शब्द प्रकाशम विभूत हो गया शब्द रूप ब्रह्म का प्रकाश जिसे ऐसे भूत भावन प्राणियों को उत्पन्न तथा पालन करने वाले पद्म योगी ही कमल से उत्पन्न ब्रह्म ने प्रबुद्ध ज्ञानवान वागात्मनी वाक् स्वरूप शब्द रूप अभ्याहत्योति अप्रतिहत प्रकाश वाली आश्रम ऋषि संबंधी योगजन्य अंतरहित अंतर्ध्यान हो गए। प्राचेत प्रचेता के पुत्र वाल्मीकि ने विवर्तम रूपांतर परिणाम ठीक है वन देवेति चित्रम आश्चर्यम आमनयात आमनायते आचार्या परंपरा क्रमे अधिगम्यम यथाविधि अभ्यस्तस्य इत्यनाययोः वेदस्तस्माद् अवतारः अविर्भावः समयेन कालेन तस्मिन्नेव काले इत्यर्थ अविर्भूत शब्द प्रकाशम अविर्भूत प्रकाशितः जनुष्व पछंद रूपेण मा निषाध इत्यादि नाम कल्पस्य उदयम् इत्यर्थ शब्दस्य बाग ब्रह्मण प्रकाश ज्योतिर्मस्य रूपः तम् भूतभावनः भूतानि प्राणिनि भावयति सृजयति भूतभावनः सृष्टिकर्ता पद्मयोनि पदम् विभूषणाभिः कमलयोनिः उत्पत्तिस्थानम् यस्य स तादृश सम्प्रबुद्ध प्रकृष्ट ज्ञान सम्पन्न वागात्मनि शब्द स्वरूपे अव्याहत ज्योतिः अव्याहतम् अप्रतिहतम् ज्योतिः प्रकाशो यस्य तत् अकुण्ठितम् इत्यर्थ आर्षम ऋषिणाम इदम् आर्षम ऋषि सम्बन्धी योग जनिति भावः अन्तम् हितम् अन्तर्दृश्यताम् गतः प्राचेतस बाल्मीकि विवर्तम् रूपान्तरम् परिणामम् इत्यर्थ टिप्पणी आम्नायतात् आवतरः अवतारः वेदों में गायत्री त्रिशूप तथा जगती का क्रम नियत नहीं है। यह क्रम सर्वप्रथम वाल्मीकि के रामायण में ही मिलता है, इसके बाद ही लौकिक काव्यों में यह क्रमबद्ध छंद मिलता है। उपसंगम्यम उपपलस संग पलस गम पलस लेप वागात्मनि ब्राह्मणी वचन रूपी ब्राह्मण के विषय में ब्रह्म ब्रह्मा में वैयाकरणों के अनुसार शब्द अविनाशी है, वे शब्द को ब्रह्म मानते हैं। वाक्य पदीय में शब्द ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार है, अनाधिन जनम ब्रह्म शब्द तत्व यदक्षरम विवर्तम अद्य अर्थ भावे न प्रक्रिया जगतो यतः अर्थम ऋषि संबंधी ऋषे इदम ऋषि अण विभक्ति कार्यम अद्य कवि वाल्मीकि को आदि कवि तथा रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। विवर्तम विवर्त कहते हैं परिणाम को, विवर्त एवं विकार वेदांत के परिभाषिक शब्द हैं। किसी वस्तु के अतात्विक अवास्तविक रूपांतर को विवर्त कहते हैं। उदाहरणार्थ कहा जाए सकता है कि अंधेरे में रस्सी में प्रतीत होने वाला सांप रस्सी का विवर्त है, क्योंकि रस्सी सचमुच सांप नहीं हो सकता किंतु वास्तविक रूपांतर को विकार कहते हैं। जैसे दधी दूध का विकार है क्योंकि दूध सचमुच दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विशेष जानकारी के लिए देखिए डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी के द्वारा व्याख्या का एवं संपादित वेदांत सार शब्दार्थ हंत ओह यह निषाद का सूचक अव्यय है। अध्ययन प्रत्युह अध्ययन में विघ्न इतः इधर से यहाँ से ततः वैसा एव ही टीका बन देवेति अनुप्रविशय प्रवेशम कृत्वा शास्त्रम अस्त्रेण अश्रुणाम सहितं यथा तथा अत्रेति सर्वत्रैव अपि प्रश्नार्थबोधम् अव्ययम्।
श्लोक नंबर 6 पृष्ठ संख्या 34 सते बल्लभवन्धो वर्गः प्रासंगिकिनां विषय कथानां त्वां नामशेषम् अपि दृश्यमानः प्रत्यक्ष दृष्टाम् इव न करोति वासन्ति सभ्यं स्वगतम् कथम नाम से साम इत्यह प्रकाशम आये किमित्याहितम सीता दिव्या अत्रै न केवलम इत्याहितम सापवादमपि करणे एवम इति वासन्ति हा दारुणो दैव निर्घात इति मूर्छति अत्रै भद्र समाश्वासिहि समाश्वासिहि वासन्ति हा प्रिय सखी उर्दिदृश्यते निर्माण भागः हा राम भद्रः अथवा अलम त्वया आर्ये अत्रेयी अथ तस्मादारण्यात् परित्यज्य निवृते लक्ष्मणे सीतायाः किं वृतम् इति काशीदस्ति प्रवृत्तिः अत्रे नहि नहि वासन्ति कष्टम् आर्या अरुन्धती वसिष्ठ अधिष्ठितेषु न कुलेषु जीवन्तिषु च वृधासु राजिषु कथम् इदम् जातम् अत्रै ऋष्यशृङ्गत्र गुरुजनस्तदा आसीत् सम्प्रति तु परिसमाप्तम् तद द्वादशवार्षिकम् सत्रम् ऋष्यशृङ्गेण च सम्पूज्य विसर्जिता गुरवः ततो भगवत्या अरुन्धती त्राह वधूविरहिताम अयोध्याम गृमिष्याम इत्याह तदेव राममात्री अनुमोदितं तदनुगोधा भगवतो वसिष्ठस्यापि श्रद्धा वाल्मीकिन्यगत्या वत्स्याम इति वासन्ति अथ स रामभद्रसुनचारः अत्रैः तेन राज्ञाः राजकर्तृमवश्य अश्वमेघ प्रकरान्तः वसन्ति अह दुःख परिणतिमपि अत्रैः शान्तम् नहि नहि वासन्ति का तरहि यज्ञे सहधर्मचारिणी अत्रैः हिरण्यम् मयि सीता प्रकृति गृहिणीकृता वासन्ति हन्त भो हिंदी प्रासंगिक कथाओं का विषय सामने स्थित वही या तुम्हारा प्रिय बंधुवर्ग केवल नाम भर से अवशिष्ट भी तुम्हारे हमारे सामने दिखती हुई सी कर रहा है अर्थात तुम्हारे प्रिय इन व्यक्तियों तथा स्थानों को देखकर लगता है तुम्हें देख रही हूँ वासंती भाई के साथ अपने आप क्या सीता को नाम मात्र से ही शेष बतला रही है प्रकट रूप से आइए सीता देवी का क्या प्राण संकट हुआ अर्थात क्या सीता देवी मर गई अत्रेयी केवल प्राण संकट ही नहीं बल्कि वह प्राण संकट लांछन के साथ भी हुआ है काल में इस प्रकार अर्थात बात यह है वासंती हाय विधि का भीषण वज्र प्रहार हुआ है ऐसा कहकर मूर्छित हो जाती है अत्रेयी भली भाई मानस धैर्य धारण करे वासंती हाय प्रिय सखी तुम्हारी उत्पत्ति का परिणाम ऐसा हुआ हाय राम भद्र अथवा तुमसे क्या अर्थात तुम्हें कुछ कहना निरर्थक है आइए अत्रेयी अच्छा सीता को छोड़कर उस वन में लक्ष्मण के लौट आने पर सीता का क्या हाल हुआ इसका कोई समाचार ज्ञात हुआ नहीं नहीं वासंती बड़ा दुख है परंतु पूज्य अरुंधति तथा वशिष्ठ के द्वारा संचालित हमारे कुल रघुकुल में वृद्ध कौशल्या आदि महारानियों के जीवित रहते हुए यह अनर्थ कैसे हुआ अत्रेयी उस समय अरुंधति वशिष्ठ आदि गुरुजन दुष्टशृंग के यज्ञ में थे 12 वर्ष तक चलने वाला यह यज्ञ असमाप्त हो गया है और ऋषि दुष्टशृंग के द्वारा सत्कार करके गुरुजन विदा भी कर दिए गए हैं तब भगवती अरुंधति ने कहा मैं बधु सीता से रहित अयोध्या में नहीं जाऊंगी राम की माताओं ने भी उसी बात का समर्थन किया उनके अनुरोध से भगवान वशिष्ठ की भी अभिलाषा हुई कि हम लोग वाल्मीकि के तपोवन में जाकर रहेंगे वासंती अब वे राम भद्र क्या कर रहे हैं अत्रेयी उस राजा के द्वारा राजकीय यज्ञ अष्टमेघ आरंभ किया गया है वासंती यह धिक्कार है क्या विवाह भी कर लिया गया अर्थात क्या राम ने विवाह भी कर लिया अत्रेयी आप शांत हो नहीं नहीं विवाह नहीं किया गया है वासंती तो यज्ञ में के धर्म में उनके साथ साथ कार्य करने वाली धर्मपत्नी कौन है अत्रेयी सुवर्णमयी सीता की प्रतिमा पत्नी बनाई गई है ओह वासंती अन्य प्रासंगिकी नाम कथा नाम विषय दृश्यमान सह एष वल्लभ बंधुवर्ग नाम शेषाम अपी त्वाम नह प्रत्यक्ष दृष्टाम इव करोति शब्दार्थ प्रासंगिकी नाम प्रासंगिक कथा नाम कथाओं का विषय विषय दृश्यमान सामने स्थित सह वही एष यह तो तुम्हारा वल्लभ बंधुवर्ग प्रिय बंधुवर्ग नाम शेषाम केवल नाम भर से अवशिष्ट अपि भी तो क्या तुमको न हमारे प्रत्यक्ष दृष्टम प्रत्यक्ष दिखती हुई इव सी जैसी करोति कर रहा है ठीक है स इति प्रासंगिकी नाम प्रासंगात वार्ता क्रमात आगता प्राप्ता इति प्रासंगिक्य अवसारगता तासाम कथा नाम वार्तनाम विषय प्रतिपाद्य दृश्यमान प्रत्यक्षम विषयीभूत सह पूर्व परिचित अयम ते तव वल्लभ बंधुवर्ग वल्लभ प्रिय सुशास बंधुवर्ग वासंती प्रमुख सुहृद वर्ग नाम शेषा नाम अभिधानम एव शेष अवशेष यस्याह सा ताम नाम नैव शिष्टाम लतुश्रोण इति यावत अपि च त्वं सीताम इत्यर्थः नयस्माकं प्रत्यक्ष दृष्टाम प्रत्यक्षं समक्षं दृष्टाम अवलोकिताम इव यथा करोति विदहति एक संबंधिनामपि संबंधस्माकं इति न्यायात् पूर्व जानकी निवास कृतार्थं जलस्थानं तत्संबंधं गोदावरी प्रभृतिं च विलोक्य स्नेहा अतिशय जानकीं प्रत्यक्ष दृष्टाम अनुभूत भवन्ति अत्र उत्प्रेक्षा अलंकारः उपजाति वृतम टिप्पणी नाम शेषम कवि ने यहाँ पर शब्द इस शब्द का सा अभिप्राय प्रयोग किया है इससे सीता के निर्वासन की सूचना मिलती है संभवतः अत्रेयी सीता के परित्याग के बाद उन्हें मृत समझ रहे हैं। इस श्लोक में दर्शन क्रिया की उत्प्रेक्षा होने से क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें प्रयुक्त छंद का नाम उपयति है छंद का लक्षण स्यादिन्द्र वर्या यदि तौ जगौ गह उपेन्द्र वर्या जतस्जातस्तौ गौ अनंतरोदर इत्तलक्ष्म भाजौ पादौ यदि दावपुरुषं जातस्यास्ताः सरदार अत्याहितं मा भय प्रण संकट शापवादम लांछन के साथ दारुण भीषण कठोर दैव निर्घात विधि का प्रहार निर्माण भाग उत्पत्ति का परिणाम जीवन का अंत वृतम घटित हुआ हाल हुआ प्रवृत्त हुई समाचार वृतांत टीका वासंती अत्याहितम महाभीति प्रहानिरति भावार्थ अत्याहितम महाभीति कर्म जीवन प्रेक्षा चैत्यमर सापवादम अपवादेन लांछनेन सहितं सापवादम अत्याहितं जातम एव परंतु अपवाद सहितं तोहिदं मानं भूतिं भूतित्यभिप्रायः दारुणः भीषणः दैवनिर्घातः दैवस्य भागस्य निर्घात प्रहारः निर्माण भागः निर्माणस्य सृष्टे भागः अंश फलमिति यावत् वृतं निष्पन्नं घटितं प्रवृत्ति वार्ता समाचारः तद्विषयी कापि कथत इत्यर्थः चित्तौ वासंतीति कवि ने अभी तक वलदेवता शब्द का प्रयोग किया है परंतु संप्रति अत्रेयी तथा वलदेवता की बातचीत से यह ज्ञात होता है कि वलदेवता का नाम वासंती है अतः यहाँ से वलदेवता शब्द के स्थान पर वासंती शब्द का प्रयोग हुआ है एवं इति अत्रेयी वासंती के कान में धीरे से कह रही है कि राम ने लोक लांछन के कारण सीता का परित्याग कर दिया है लोगों में यह कायना फूसी चल रही है कि यतः सीता एक लंबे समय तक रावण के पास थी अतः उसने सीता के साथ अवश्य गड़बड़ की होगी किंतु फिर भी राम ने सीता को रख लिया निर्घात निर प्लस हन प्लस घन प्लस विभक्ति कार्यम परित्यज्य छोड़कर परित्यज्य लेप ब्रितम ब्रित प्लस कता प्लस विभक्ति कार्यम सर्वार्थ जीवंतीषु जीवित रहते हुए सत्रम यज्ञ विसर्जिता विदा कर दिए गए श्रद्धा अभिलाषा वासंती तिथि का जीवंतीषु वर्तमानासु सत्रम यज्ञम विसर्जिता स्वगृह गमनायम अनुमोदिता श्रद्धा अभिलाषा टिप्पणी जीवंतीषु जीव प्लस सत्री प्लस उंगीत प्लस नुम प्लस भारे सप्तमी विभक्ति कार्यम अनुमोदितम अनु प्लस मुद प्लस ऋष प्लस कत प्लस विभक्ति कार्यम सर्वार्थ राम भद्र भले राम क्रियाचार किस आचार वाले अर्थात क्या कर रहे हैं प्रकरण आरंभ किया गया है परिणितम विवाह कर लिया गया है सहधर्मचारिणी पत्नी सीता प्रकृति कृति सीता की प्रतिमा गृहणी कृता पत्नी बनाई गई है टीका वासंती राम भद्र भद्र पुरुष राम इत्यर्थ किमाचार किम आचार कर्म अस्त इति किमाचार कस्मिन् कर्मणि व्यावृत्य इत्यर्थः प्रकरणतः आरब्ध परिणितम् अपि लिब्धापि कृत्वान् केवलं निरपराध पत्नी निर्वाध निद्यते अपि तु विवाहो अपि कृत इत्यपि न प्रश्नो द्योतितः सहधर्मपत्नी सहचारिण धर्मचारिणी निगद्यते सीता प्रकृति प्रतिप्रकृति सीतायाः जानत्याः प्रतीकृति प्रतिमूर्ति प्रतीम इत्यर्थः गृहिणी कृता धर्मपत्नी कृता टिप्पणी रामभद्र अत्यंत लोकप्रिय तथा सबके लिए अभिषितम व्यक्ति के नाम से के साथ भद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रकरण आरंभ किया गया है प्र प्लस क्रम प्लस कृत प्लस विभक्ति कार्यम परिणितम अपि परि प्लस नी प्लस कृत प्लस विभक्ति कार्यम सपत्नी को ही यज्ञ करने का अधिकार है। राम ने सीता को घर से निकाल देने के बाद यज्ञ आरंभ किया था। इससे बासंती ने अनुमान किया है कि राम ने अपना दूसरा विवाह भी कर लिया है। श्लोक नंबर 7 पृष्ठ संख्या 138। मृगादपि कठोराणी मृगूनी कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनु विज्ञातुमर्हति। अत्रैः विसृष्टश्च वामदेवाभिमन्त्रितो मेध्याश्वः प्रकृताश्च तस्य यथाशास्त्रम् रक्षितारः तेषामधिष्ठाता लक्ष्मणात्मज चन्द्रः चेतो दिव्यास्त्रसम्प्रदायः चतुरङ्गसाधनान्वितो अनुप्रहितः। वासन्ति ब्रेकेट संघर्ष कौतुकास्त्र ब्रेकेट वन कुमार लक्ष्मणस्यापि पुत्रः इति मातः जीवामि। अत्रै अत्रान्तरे ब्रह्मणेन मित्तम् मृतम् पुत्रम् उत्क्षिप्य राजद्वारे सुरस्तारम् ब्रह्मण्यम् उद्घोषितम् ततो न राजा पञ्चाक्षरमन्त्रेण प्रजा नाम कालमृते सञ्चरतो इत्यादमदोषः निरुप्यति करुणामये रामभद्रे सहस्यैव वारिणि शरीरिणि। वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल अलौकिक महापुरुषों के हृदय में हृदय को कौन जानने में समर्थ हो सकता है अर्थात कोई नहीं। अत्रैः वाम देवता ऋषि के द्वारा अभिमंत्रित यज्ञ अश्व छोड़ा गया है उस अश्व के शास्त्रानुसार रक्षक भी नियुक्त किए गए हैं। लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु जिन्हें दिव्य अस्त्रों का समूह प्रदान किया गया है और जो चतुरंगिणी सेना से युक्त है उस अस्त्र के पीछे पीछे भेजे गए हैं। बासंती ब्रैकेट हर्ष और कुतूहलता के साथ आंसू भरकर हे मां कुमार जानकर मैं जी गई। अत्रैः इसी बीच में एक ब्राह्मण के द्वारा अपना मरा हुआ पुत्र राजद्वार पर फेंक कर छाती पीटते हुए चिल्लाकर कहा गया कि ब्राह्मणों के लिए अनर्थ है तब राजा के धर्म उल्लंघन के बिना प्रजा की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस प्रकार दयालु रामभद्र ने अपने दोष का निरीक्षण करने पर विचार करने पर एकाएक आकाशवाणी हुई अनर्थ अबज्रात अपि कठोराणी चकुसुमात अपि मृगेणी लोको दरामाणम् लोक उत्तराणाम् चेतांसी कहनु विज्ञातुम अर्हति। सर्वदार्थ वज्रास वज्र से अति भी कठोराणी कठोर च और कुसुमात फूल से अति भी मृदुनी कोमल लोकोत्तराणाम अलौकिक महापुरुषों के चेतांसी हृदयों को कह कौन नु यह प्रश्न का द्योतक अव्यय है। विज्ञातुम जानने में जानने के लिए अर्हति समर्थ हो सकता है। टीका ब्रजाद इति ब्रजाद कुंसाज अति च कठोराणी कठिनानी तथा कुसुमात पुष्पात अति च मृदुनी कोमलानी लोकोत्तराणाम लोकेभ्यः समानाम जलेभ्यः उत्तराणाम विलक्षणानाम अलौकिक गुणवतानाम महतानाम जनानाम इत्यर्थ चेतांसि हृदयानि कोनु कह इत्यर्थ विज्ञातुम बोधतुम अर्हति योग्यो भवति। लकोप इति भाव महतां चित्त वृत्तयो दुग्धराह इत्याशयः अत्र विषय अप्रस्तुत प्रशंसार्थम् अपत्यालंकाराणां सकरः शंकरः श्लोकोद्धृतम् टिप्पणी विज्ञातुम् वी प्लस ज्ञा प्लस तुमुन इस श्लोक में कठोर और कोमल दो विपरीत गुणों के एक साथ स्थिति होने से विषम अलंकार को नूप विज्ञातुम अर्हति में अर्थापत्ति अलंकार है। इसमें प्रयुक्त छंद का नाम अविष्कृत है। सर्गात विसृष्ट छोड़ा गया है मेघ्याश्च यज्ञेयश्च प्रकरण लिप्ता किए गए है नियुक्त किए गए है अधिष्ठाता नायक सेनापति दत्त दिव्यास्त्र संप्रदाय दिया गया है अर्थात सिखलाया गया है दिव्यास्त्रों का समूह जिनको ऐसे चतुरंग संधन नान्वित चतुरंगणी सेना से युक्त अनुप्रहित पीछे पीछे भेजे गए है। टीका अत्र इति विशिष्ट अव्याहत गत विमुक्त मेध्यावश्य मेधाय यज्ञाय हितम मेध्य यज्ञ इत्यर्थ सचासौ अश्व तुरंग यज्ञ तुरंग इत्यर्थ प्रलुप्ता कृता नियोजिता इत्यर्थ अधिष्ठाता नायक सेनापतिर इत्यर्थ एवत यावत दत्त दिव्यास्त्र संप्रदाय दत्त वित्रेण अध्यापित इति यावत दिव्यानाम अलौकिकानाम अस्त्राणाम आयुधानाम संप्रदाय समूह प्रयोग संहार मंत्र सहित वचनैश्च तथोक्तम चतुरंग साधनमिति चतुराणाम अंगानाम हस्तस्य रथ पदादिनाम समाहार चतुरंग द्युगु समासः चतुरंग च तत्साधनम तेन अन्वितः युक्तः अनुप्रहितः यज्ञाश्च पुष्पतः प्रेषितः टिप्पणी विसृष्टः वी प्लस सृज प्लस कत प्लस विभक्ति कार्यम वामदेवाभिनंदितः वामदेव एक ऋषि थे। इनके नाम का उल्लेख प्राय वशिष्ठ के नाम से किया साथ किया मिलता है। वशिष्ठ की अनुपस्थिति में रामचंद्र जी ने इन्हीं की अध्यक्षता में अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर दिया था। प्रकृत विभक्ति कार्यम अधिष्ठाता नायक अभि स्था प्लस त्रिच प्लस विभक्ति कार्यम चतुरंग चतुरंगी सेना के सहित सेना के चार अंग माने जाते थे हाथी अश्व रथ पैदल सेना। साधन का अर्थ सेना भी होता है। मातर जीवामी मातः जीवामी वासंती लक्ष्मण के पुत्र को जानकर प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। अभी तक उसे लक्ष्मण के संतान के बारे में कुछ भी ज्ञात न था। सरदार अत्रांतरे इसी बीच में फेंक कर सोरस्तारम छाती पीटते हुए अब्रह्मण्यम ब्राह्मणों के लिए अलर्थ है ब्राह्मणों के ऊपर आपत्ति आ गई है इस प्रकार का शब्द उद्घोषितम चिल्लाकर कह रहा है। राजापचारम राजा को धर्मोल्लंघन से अंतर बिना निरूपयति निरीक्षण करने पर असरुणी वाक आकाशवाणी टीका अत्र इति अत्रांतरे अस्मिन् अवकाशे उत्क्षिप्य आरोप्यलक इत्यर्थ सोरस्तारम सह लक्ष्यस्थलस्य तांडनेन प्रहारेण सहितं यथा तथेत इत्यर्थ अब्रह्मण्यम ब्राह्मणे ब्राह्मणाय हितं ब्राह्मण्यम न ब्राह्मण ब्राह्मण्यम ब्राह्मणानाम उल्लंघनम इत्यर्थ उद्घोषितं उच्चैरुचा चरितं राजापचारं राजदोषं राज्या धर्मोल्लंघनम इत्यर्थ अंतरेण बिना निरूपयति सूक्ष्म बुद्ध्या विचारयति सति असरिणी वाक आकाशवाणी इत्यर्थ टिप्पणी उत्क्षिप्य उत प्लस क्षिप प्लस लेप प्राचीन काल में यह धारणा थी कि राजा में राजा के कर्म दोष के कारण ही प्रजा की अकाल मृत्यु हुआ करती है। ठीक इसी तरह की घटना का वर्णन भागवत के दशम स्कंद में भी है। वह ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को श्रीकृष्ण के दरवाजे पर डालकर अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम चिल्ला रहा है। अब्रह्मण्यम इसका अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण के ऊपर महान विपत्ति आई है। श्लोक नंबर 8 पृष्ठ संख्या 46। शंभुको नाम विशलः पृथिव्याम तप्यते तपः शीर्षक्षेदः शते रामो तम् हत्या जिवया द्विजम् इत्योपसृत्य कृपाणपाणिः पुष्पकम् अविरुद्धाः सर्वादिषु विदेशस्य रुक्षुद्र तापसान्वेषणाय जगत्पति सञ्चारम् समारबद्धान् वासन्ति शम्भुको नाम मुग्धो मुखो धूमपः शुद्रस्मिन्नेव जलस्थाने तपश्चरति अपि नाम रामभद्र पुनरयम् पुनरमिदम् वनमम् कुर्यात् अत्रै भद्रो गम्यतेम् अधुना वासन्ति आर्ये अत्रेयि एवमस्तु कठोरश्च दिवसः तथा हि कन्दुलद्वीपगपिण्डकः ऋणुकम्पेन सभागतिभिः सम्पातिभिः हिन्दी सम्भुक् नामक क्षुद्र भूतल पर तपस्या कर रहा है। हे राम, वह तुम्हारे द्वारा सिर काटे जाने की इच्छा है, इसे मारकर ब्राह्मण बालक को जीवित करो। ऐसा सुनकर तलवार हाथ में लिए हुए संसार के स्वामी राम पुष्पक नामक विमान पर चढ़कर शुद्र तपस्वी को ढूंढने के लिए दिशाओं एवं विदिशाओं में घूमना आरंभ किए। वासंती, नीचे की ओर मुंह किए हुए धूमपान करने वाला शम्भुख नामक शुद्र इसी जलस्थान में तपस्या कर रहा है, तो ऐसी क्या संभावना है कि रामभद्र फिर इस वन को सुशोभित करेंगे। अत्रि भलिमानस मैं अब जा रही हूँ। वासंती, पूज्य अत्रि ऐसे ही हो, दिन कठोर अर्थात तेज धूप वाला हो गया है, जैसे कि
शम्भुकः नाम विशलः पृथिव्याम् तपः तप्यते हे रामसः ते निर्षच्छेदः अस्ति तम् हत्वा द्विजम् जीवय। शब्दार्थ शम्भुकः नाम शम्भुक नामक वृषलः वृषल पृथिव्याम् भूतल पर तपः तपस्या तप्यते कर रहा है। हे राम सह वह ते तुम्हारे द्वारा शीर्षच्छेद सिर काटे जाने के योग्य अस्ति है, तम उसे हत्वा मारकर द्विजम ब्राह्मण को ब्राह्मण बालक को जीवय जीवित करो। ठीक है। कीदृशी सा दैवी वाक इत्याह शम्भुको नाम इति शम्भुको नाम शम्भुकाख्यः वृषलः वृषम् धर्मम् लुनाति छीनैति वृषलः शुद्रः पृथिव्याम् भूम्याम् तपः तपस्याम् तप्यते चरति हे रामचन्द्रः सः तपसि रतः शुद्रः इत्यर्थः ते तव शिरसच्छेदः शिरणाः शिरोच्छेदेन इत्यर्थः छेद्यः छेदयितुम् अर्ह अथवा शिरच्छेदम् अर्हति शिरच्छेद्यः अस्तीति क्रियाशेषः तम् तादृशम् धर्ममूलत् लङ्घन्तम् शुद्रम् इत्यर्थः हत्वा विनाशाय विनाश्य द्विजम् ब्राह्मणम् बालम् इत्यर्थः जीवय रक्ष प्रत्युज्यत जीव इत्यर्थः अनुष्टुप छन्दः। टिप्पणी वृषलः तप्यते मनु आदि स्मृतिकारों के अनुसार विप्र सेवा ही शूद्र का कर्तव्य माना जाता है। उसे तपस्या करने का अधिकार न था, उसके द्वारा तपस्या का होना धर्म का उल्लंघन माना जाता था। शीर्षक छेद्यः शीर्ष छेद्य यत प्लस भक्ति कार्यम इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। शब्दार्थ उपश्रुत्य सुनकर कृपाणपाणी तलवार हाथ में लिए हुए पुष्पकम पुष्पक नामक विमान पर अधिरोहीय चढ़कर जगतपति संसार के स्वामी संचारम घूमना भ्रमण करना अधोमुख नीचे की ओर मुंह किए हुए धूमपान करने वाले अपि नाम क्या ऐसी संभावना है कठोर कड़ा तेज धूप वाला। टीका इत्यपश्रुत्यत इति उपश्रुत्य पूर्वोक्तां देवीं वाचम् च
समाकर्ण्यं कृपाणपाणि कृपाणः शङ्खः पाणौ हस्ते यस्यासौ पुष्पकं पुष्पकाम्नामना प्रसिद्धं विमानं अधिरुह्य पुरा कील मनोहरं वेगवन्तं विमानं यक्षराजाय कुबेराय ब्राह्मणा दत्तं तं विजित्य गृहीतवन्तं रावणं निजित्य राघवस्तत प्रापवन्तीति रामायणी कथा त्रानुसन्धेया जगत्पतिः जगताम संसारणाम पतिः स्वामी संचारम भ्रमणम अधोमुखः निचैरमुखः धूमपः धूमं पिबतीति धूमपः अपि नामैति संभावना गर्भः प्रश्नः कठोर पुरातनांगः तीव्रो धर्मम् इति यावत् टिप्पणी पुष्पकम् भगवान ब्रह्मा ने यह विमान कुबेर को दिया था। कुबेर को जीत कर इसे रावण ने छीन लिया था। भगवान राम इसी विमान पर चढ़कर लंका से अयोध्या लौटे थे। बाद में उन्होंने इसे कुबेर को वापस कर दिया था। अधोमुख प्राचीन काल में वृक्ष के नीचे आग जलाकर तथा डाल में अपने पैरों को बांधकर नीचे की ओर मुंह कर धुआं पीते पीते तपस्या करना असाधारण कार्य माना जाता था। शूद्र इसी कार्य की तपस्या में संलग्न था। श्लोक नंबर 9 पृष्ठ संख्या 142। कंडुल द्वीपकंड पिंड कसद उत्पकंपनेन संपातेर्भिधर्म शीतबंधनश्चैव शीतबंधनैश्च कुसुमैश्च रन्ति गोदावरीं छाया पस्किरणं माणविष्किरण मुख्याः कृष्ट कीचकपचः कुयत्वं लाचकं कपोत कुक्कुट कुलाः कुले कुलाय द्रुमाः इति परिक्रम्य निष्क्रांते इति शुद्ध विस्कंभकः। हिंदी। तट पर स्थित छाया में कुरेदते हुए पक्षियों की चोट से निकाले जा रहे हैं कीच जिनकी छालों से ऐसे कूजते हुए थके कबूतरों तथा मुर्गों के समूह से युक्त पक्षियों के घोंसले वाले वृक्ष खुजलाहट वाले हाथियों के गंडस्थल की रगड़ से हिलने के कारण गिरने वाले घाम से शिथिल वृंत वाले फूलों से गोदावरी को पूजित करते रहे हैं अर्थात गोदावरी की अर्चना कर रहे हैं। ऐसा कहकर घूमती हुई दोनों बाहर निकल जाती है।
शुद्ध विष्कंभक समाप्त होता है।
अन्वय। खुले स्थिता छाया पस्किरणमाण विस्किरम मुखभ्या व्यावृष्टि कितत्वच कुजत्तत्कालंतम कपोत कुक्कुटा कुलाय द्रुमाह कंडुल दीपगंड पिंड कसणोत कंपनेन संपातिः धर्मस्त्र शीतबंधनैः कुसुमैः कृत गोदावरीं अर्षन्ति। शब्दार्थ। कुले तट पर किनारे स्थित छाया पस्किरणमाण विष्किरण मुख व्यावृष्ट कृतत्वम छाया में कुरेदते हुए पक्षियों की चोंच से निकाले जा रहे हैं कीट जिनकी छालों से ऐसे कुजत क्लांत कपोत कुक्कुट कुलाह कूजते हुए तथा थके कबूतरों तथा मुर्गों के समूह से युक्त कुलाय द्रुमाह पक्षियों के घोंसलों वाले वृक्ष कंडुल दीपगंड पिंड कणस्वोत कंपनेन खुजलाहट वाले हाथियों के गंडस्थल की रगड़ से हिलने के कारण संपाति ही गिरने वाले
धर्मशीत
बंधनई धाम से स्थित वृतांत वाले कुसुमई फूलों से गोदावरी गोदावरी को अर्चन्ति पूजित कर रहे हैं। टीका। अथ इदानीं निराघात पश्चात योवासनीयंताम वर्णसिन्नाः कंडुलेत इति कुले गोदावरी तीरे तिष्ठिता इति शेषः छाया इत्यादि छायायाम् अनातपे अपस्किरणमाणः कीटभक्षमाणार्थः तरुवल्कलेषु चञ्चवाघनातम् कुर्वतम् नख रक्षलिखन्तम् चेत्तेत्यापि बोध्यम् ये विष्किराः पक्षिणः विकिरः विविष्किरः पत्रयः
इत्यमरः
चरमुखैः चञ्चुभिः करणैः व्यावृष्टाः आकर्षणेन बहिष्कृताः कृताः क्षुद्रजीवाः ज्याभ्यस्तथोक्ताः त्वचः वल्कलानि येषाम् ते तथोक्ताः कुजत्वकालन्त इत्यादि कुजन्ति मधुरमव्यक्तच्च छन्दम् कुर्वन्ति कलान्तानि आतपातखेदमुपगतानि कपोतानाम् परावतानाम् कुक्कुटानाम् कुक्कवाकुलाञ्च कुलानि समूहा एषु तथोक्ताः कुलाय द्रुमाः कुलाय भूताः द्रुमाः कुलाय द्रुमाः विहगाय वा सम्भूताः तरवः साकपार्थिववादिवत् समासः कण्डुलेत्यादि कण्डुलानाम कण्डुचैत्युक्तानाम् दीपगण्डपिण्डानाम पिण्डकार गज कपोलानाम कषणेन घर्षणेन यः उत्कम्पनम् अत्य अर्थ चलनम् तेन सम्पातिभिः सम्पातितिम् सम्पातिनीम् स्खलन्ति तथा विदैह धर्मत्यादि धर्मेण आतपतेन धर्मः स्यादात् आतपे ग्रीष्मे इति मेदिनीम् स्त्रसितानि शिथिलानि बन्धनानि वृतानि येषाम् तैस्तैक्षोणैः कुसुमैः प्रसूनैः गोदावरीम् गोदावरीनामधेयाम् नदीम् अर्चन्ति पूजयन्ति आतपेन शिथिलबन्धनानि तत सरूपाणाम् पुष्पाणि नदीजलमध्ये निपतन्ति अनेन महाकवि तेषाम् गोदावरीपूजनम् सम्भावयति
अत्र उत्प्रेक्षा
अलङ्कारः स्वभावोक्तोः शङ्करः शार्दूलविक्रीणितम् छन्दः टिप्पणी सम्पातिः गृते हुए सम्पतीति सम्पलस्पत्पलसणिनी पुलस्तृतीये बहुवचने विभक्तिकार्यम् शुद्धभिस्कम्भकः संस्कृत के नाटकों में कुछ ऐसे भी अंश होते हैं जो बीती हुई कथा का आने वाली कथा के साथ संदर्भ जोड़ते हैं। ये अंश अर्थोपक्षेपक कहे जाते हैं। ये पांच प्रकार के होते हैं, विस्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका, अंकावतार और अंकमुख। विस्कम्भक उस अर्थोपक्षेपक को कहते हैं जो बीती हुई तथा आगे आने वाली घटनाओं की सूचना संक्षेप में देता है। यह अंक के आदि में जोड़ा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, शुद्ध और संकीर्ण, जिसमें एक अथवा एक से अधिक मध्यम श्रेणी के पात्र होते हैं और संस्कृत में संभाषण करते हैं, उसे शुद्ध विस्कम्भक कहते हैं। इसमें कुछ मध्यम और कुछ अधम श्रेणी के पात्र होते हैं तथा संस्कृत एवं प्रकृत दोनों भाषाओं में संभाषण करते हैं, उसे संकीर्ण विस्कम्भक कहते हैं। देखिए साहित्य दर्पण श्लोक नंबर 10 पृष्ठ संख्या 144। ततः प्रविशति सद्योद्य खण्डगो रामः राम रेहस्तः दक्षिणः मृतस्तः शीशोर्द्विजस्य जीवातवे विश्रियः शुद्रमौनः कृपाणम् रामस्य बहुरसी निर्भरङ्ग खिन्नः सीता विवासन पतुः करुणाकुतस्य
हिंदी। तत्पश्चात दयापूर्वक कृपाण उठाए हुए राम प्रवेश करते हैं। राम, रे मेरे दाहिने हाथ, ब्राह्मण के मरे हुए बालक को जीवित करने के लिए शूद्र तपस्वी पर कृपाण चला। तू पूर्ण गर्भ के भार से खिन्न सीता के निर्वासन में प्रवीण राम के बाहु हो, अतः तुझमें करुणा कहाँ से हो सकती है। अन्वय, रे दक्षिण हस्त द्विजस्य मृतस्य शिशुः जीवातवे शुद्रमुनो मुनौ कृपाणम् विसृजः निर्भर गर्भ खिन्न सीता
विवासनपटो रामस्य बाहु असि अतः ते करुणा कुतः। शब्दार्थ रे दक्षिण हस्त रे दाहिने हाथ बीजस्य ब्राह्मण के मृतस्य मरे हुए शिशु बालक को जीवातवे जीवित करने के लिए शूद्र मुनौ शूद्र तपस्वी पर कृपाणम कृपाण तलवार विश्रीय छोड़कर चलाकर निर्भर गर्भ खिन्न सीता निवासन पटो पूर्ण गर्भ के भार से खिन्न सीता के निर्वासन में प्रवीण रामस्य राम के बाहु बाहु असि हो। अतः इसलिए वे तुम्हें ते तुम्हें तुम तुझमे करुणा दया कुतः कहाँ से। टीका सीता निर्वासनेन रामस्य करुणा शून्यताम प्रतिपादनाया रे हस्तेति रे दक्षिण हस्तः रे अपसव्य हस्तः रे इति नीच कर्मणो अनुरूपं संबोधन पदं द्विजस्य ब्राह्मणस्य मृतस्य मृत्युपगतस्य शिशुः बालस्य जीवातवे प्रत्युजीवनाय तादर्थे चतुर्थी जीवातुरस्त्रियां भक्ति जीविते जीवनौषधे इति मेदिनी शूद्रमूनौ विशालतापसे तदबोध इत्यर्थः कृपाणं खड्गं विस्तृज मुञ्च तदुपरि पात इत्यर्थः जगति करुणामय विख्यातस्य शूद्रमुनौ तदवधाय कथं ते हस्तं प्रसर अतिशंका इत्याह निर्भरेति निर्भरः पूर्णः एतेन तस्य दुर्वहत्वं सूचितं यो गर्भ उदरस्थः शिशुरैत्यर्थः तेन खिन्ना क्लिष्टाः या सीता मत्प्रिया जानकी तस्या दिवासने निष्कासने पटुः प्रवीणस्य अकरुणैत्यर्थः पटोरण इत्यनेन छद्मना परिददामि इत्य तद विवक्षितम् इति वीरराघवः रामस्य रामचन्द्रस्य बाहु भुजः आंसवर्तसे आतस्ते तव करुणा कृपा कुतः कस्मात् संभाव्यत इति शेषः। अत्र विन्ध्यालङ्कारः वसन्तिलकं छन्वृतम्। टिप्पणी सद्योद्य खड्गः दयापूर्वक उठाया है खड्ग को जिसने ऐसे दयया सहित तदयम सदयम उद्यत उत्थापित इत्यर्थ खड्गेनासौ तादृशम् राम ने शूद्र मुनि का वध करने के लिए तलवार तो तानी है परंतु उनके हृदय में दया की तरंगे उठ रही है। इसका कारण यह है कि वे एक ऐसे निरपराध व्यक्ति को मारने के लिए तत्पर हैं, जो कि अपनी जाति के धर्म में के विरुद्ध आचरण मात्र कर रहा है। करुणा कुतस्ते तुझमें दया कहाँ से हो सकती है। इसी राम ने दया पात्र सीता का निर्वासन किया है, तुम उन्हीं के हाथ हो, अतः तुझमें दया का भाव कहाँ से आ सकता है। अर्थात कहाँ से कहीं से नहीं। राम के इस कथन के प्रतीत होता है कि उन्होंने लोकापवाद के भय से सीता को भले ही घर से निकाल दिया था, किंतु इसके लिए उनका मन खिन्न ही था। इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार तथा वसंतील का छंद है। छंद का लक्षण उक्ता वसंतील का तबजा जगौग कथंचित कथंचित प्रत्य कृतम राम सदृशम कर्म अपि जीवत्स ब्राह्मण पुत्र। शब्दार्थ कथंचित किसी प्रकार अर्थात बड़ी हिचक के साथ प्रहत्य प्रहार करके अपि जीवित, क्या यह संभव है कि वह जीवित हो जाएगा। टीका कथंचित इति कथंचित महता कष्टने इत्यर्थ दयासागरस्य रामस्य निरपराधे शूद्रमुनौ कृपाण प्रहारे संकोचस्तु समीचीनम् एवं प्रहत्य प्रहारम् कृत्वा इदम् निचिन्त्यम् दुराहारम् बधो युधम् इत्यारम्भ प्रयोग अनुचित अत्वादेशः साहित्यं दर्पणे निषेध कृतं संपादितं रामसदृशं रामस्य सदृशं योग्यं कर्मकार्यं रामस्त रामस्त्व करुणो अस्तनेन मुनिबधो नाश्चर्यजनकः इति ध्वनिः वीरराघव इत्थं व्याख्याति रामसदृशं कर्मण तु दशरथसदृश्यकर्म दशरथो ह्याबुद्धिपूर्वकं सुरतापसम्बन्धं कृतवान् तथा च पितुः शतगुणः पुत्रः इति न्यायेन दोषविषय एव न तु गुणविषय इति सोपलम्भ इह व्यज्यते क्लिष्टकल्पनया नेयं व्याख्या समावरमर्हति अपि जीवेत् किं जीवनं प्राप्नुयात् स ब्राह्मणबालकः अपीरत्राशङ्कायां सम्भावनायां विधिलिङ्गः टिप्पणी कथञ्चित् प्रहत्य किसी प्रकार मारकर मारने की इच्छा तो न थी परंतु मर्यादा की रक्षा के लिए मारना ही पड़ता। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि भवभूति के द्वारा मंच पर ही प्रत्यक्ष रूप से बध दिखलाना प्राचीन नाट्यभाष्यों नाट्याचार्यों के सिद्धांत के विपरीत है। देखिए साहित्य दर्पण 6 समुद्देश 16-18 श्लोक राम सदृशम कर्मम। इसका भाव यह है कि राम क्रूर कार्यों को करने में प्रवीण है, ऐसा कार्य उसके लिए कुछ नवीन नहीं है, वस्तुतः यह अपने लिए उलाहना है।
श्लोक नंबर 11 पृष्ठ संख्या 146 दिव्य पुरुष जयतु जयतु देवः दत्ता भये त्वयि यमादपि दण्डधारे संजीवति शिशुरसौ मम चेयं मृधि शम्भुक एष शीर्षा चरणौ नतस्ते सत्संगजानी निध्यनयन्नन्यपि तारण्यन्ति। इसी प्रकार प्रहार करके निर्दय राम के योग्य काम क्या यह संभव है कि वह ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो जाएगा। प्रवेश करके दिव्य पुरुष महाराज विजयी बने विजयी बने। यमराज से भी अभय दान देने वाले आपके द्वारा शासन करने पर वह बालक जीवित हो उठा और मेरी यह दिव्य प्राणी प्राप्ति रूप उन्नति हुई। यह सम्मुख सिर झुका कर आपके चरणों में नमस्कार कर रहा है। सज्जन व्यक्तियों की संगति से होने वाले मृत्यु भी मरने वाले का उद्धार कर देती है। यमात अपि दत्ता भये त्वयि दण्डधारे सति असौ शिशु संजीवति जीवितः च ममैयं ऋद्धि एषः शम्भुकः शिरसाते चरणौ नतः सत्संगनानि निधनानि अपि तारयन्ति तारयन्ति। शब्दार्थ यमात यमराज से अपि भी दत्ता भये अभयदान देने वाले त्वयि आपके दण्डधारे दंड धारण करने वाले शासन करने पर असौ वह शिशु बालक संजीवित जीवित हो उठा च तथा और मम मेरी इयम यह रिद्धि समृद्धि हुई उन्नति हुई एषः यह शम्भुकः शम्भुक सिरसा सिर से सिर झुकाकर ते आपके चरणों चरणों में नतः नम्र हो गया है नमस्कार कर रहा है। सत्संग जानी सज्जन व्यक्तियों की संगति से होने वाली निधनानी मृत्यु अपि भी तारयंती तार देती है उद्धार कर देती है। ठीक है भगवत कृत्य निधनम अपि समृद्ध हेतु रहिति प्रतिपादयन रामभद्रम व्याजेन स्तौ इति दत्त भय इति यमात कृतान्त अपि च दत्ताभये दत्तं वितरणं अभय अभयैति एन तस्मिन् दत्ताभये यमभय निवारके इत्यर्थः यमलोकदयानियं ब्राह्मण शिशोः पुनर्जीवनात् यमादः अमदभयं दातृतत्वं सिद्धं त्वयि
भवति दण्डधारे दण्डम् शासनम् धारयति विदध्यातिति तथोक्ते सति मम शीर्षः सदृशेन रूपम् शासनम् कुर्वन्ति सतीत्यर्थः यमशासीद्वर इत्यर्थः वीरराघवम् असौ सः बुद्धिस्तः इत्यर्थः शिशुः बालकः सञ्जीवितः प्रत्यागत प्राणः कुतः च तथा मम शूद्रस्य इत्यर्थः इयम् एषाः दिव्यरूप प्राप्ति इत्यर्थः रिधि सम्मुन्नति एषः अयम् त्वयोः प्रकृतम् इत्यर्थः शम्बुकः शम्बुकनाम्ना प्रसिद्धो अयम् शूद्रः शिरसा शिरो अवच्छेदेन मस्तकेन ते उपकारिणम् इत्यर्थः चरणौ पादौ नतः नम्रो अस्तीति प्राणम् इति भावः सत्सङ्ग मरणानि अपि च कारयन्ति उद्धारणानि भवन्तीति संसाराभ्येरैति सयसः अत्र विषमनार्थ अर्थान्तरन्यास अलङ्कारः वसन्तिलकाः छन्दः टिप्पणी दिव्यपुरुषः भगवान राम के पावन खड़ग का स्पर्श पाकर शम्बुक शूद्र शरीर को छोड़कर दिव्य शरीर धारण कर लेता है, देवरूप धारण कर लेता है। देवरूप धारण करने के बाद वह राम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। ममरिधि देवरूप धारण करना ही शम्बुक की समृद्धि है। नतः नम प्लस कर्तरी कथा प्लस विभक्ति कार्यम निगनानी नी घा उड़ादि क्यू विभक्ति कार्यम। यहाँ पर कारण दंड से कार्य समृद्धि रूप फल की विरुद्ध फल के उत्पन्न होने से विषम अलंकार है। सामान्य अर्थ है सत्संग मृत्यु से उद्धार के लिए, विशेष अर्थ शम्बुक की श्री वृद्धि की समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ है। इस श्लोक में प्रयुक्त छंद का नाम है वसंत तीलका। लक्षण उक्ता वसंत तीलका जगौगह तभजा जगौगह। शब्दार्थ द्वयम् दोनों बातें नह हमें हमारे लिए उग्रस्य उग्र तीव्र तपसः तपस्या का परिपाकः फल परिणाम टीका राम इति द्वौ अवयवौ यस्येति द्वयम् एकम् ब्राह्मण पुत्र प्रत्युजीवनम् परञ्च तव दिव्यदेव प्राप्तिरूपाः ममृद्धिश्चेति नः अस्माकम् उग्रस्य तीव्रस्य तपसः तपसायाः परिपाकः फलम्। टिप्पणी द्वयम्
दोनों ही बातें
अर्थात ब्राह्मण के बालक का फिर से जीवित होना तथा दिव्य देव प्राप्ति रूप तुम्हारी ऋवृद्धि श्रीवृद्धि द्वि अयच्च प्लस विभक्ति कार्यम परिपाक परि प्लस पच प्लस घई प्लस विभक्ति कार्यम परिपाक। श्लोक नंबर 12 पृष्ठ संख्या 148। राम द्वयम् अपि प्रियम् नः तदनुभूयातम् उग्रस्य तपः तपसः परिपाकः यत्रानन्दाश्च मोदाश्च यत्र पुण्याश्च सम्पदः वैराजानामते लोकास्तैजसाः सन्तु ते शिवाः। शम्बुक स्वामिन युष्मत्प्रसादाद् देवैषः महिमा किमयत्र तपसा अथवा मुहद उपकृतम् तपसा। हिंदी राम दोनों बातें मैं हमें प्रिय है अतः तीव्र तपस्या का फल भोगो। जहाँ आनंद तथा आमोद है, जहाँ पवित्र संपत्तियाँ भी है, वैराज नामक वे लोग तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो अर्थात तुम्हें प्राप्त हो। शम्बुक स्वामी आपकी कृपा से ही मुझे यह महत्व प्राप्त हुआ है। इसमें तपस्या के द्वारा क्या अथवा तपस्या के बड़ा उपकार किया गया है। अन्वय यत्र आनन्दाः च मोदाः च यत्र पुण्याः सम्पदः च सन्ति वैराजाः नाम तैजसाः ते लोकाः ते शिवाः सन्तु। शब्दार्थ यत्र जहाँ आनन्दाः आनन्द च तथा मोदाः आमोद च और यत्र जहाँ पुण्या पवित्र संपदा संपत्तियां च भी संति है। वैराजा वैराज नाम नामक ते वे लोका लोक ते तुम्हारे लिए सिवा कल्याणकारी संतु हो। टीका यत्रेति यत्र येषु लोकेषु आनंदा सुखानि च तथा मोदा हर्षा च अपि यत्र येषु लोकेषु पुण्या पावना संपदः संपतयः संतिति शेषः वैराजा विराजः ब्राह्मणः हमे इमे वैराजा ब्राह्मण संबंधी ब्रह्म संबंधिनाम नामकाः वैराज नामका इत्यर्थ तैजसः तैजसः इमे तैजसा तेजोमया ते तादृशाः जगद्वी विदात् वेदिता वित्यर्थः लोकाः भुवनानि ते तव शम्बुकम् इत्यर्थः शिवाः कल्याणकारिणा सन्तु भवन्तु तत्र तवाधिवासः स्यादित्यासिः अनुष्टुपछन्दः। टिप्पणी वैराजा नाम लोकाः विराट अर्थात ब्रह्म ब्रह्म के लोक को वैराज कहते हैं। नाम प्रसिद्धार्थक अव्यय है। पुराणों के अनुसार कुल 14 लोक हैं। इसमें 7 ऊपर और 7 नीचे। ऊपर के 7 लोकों का नाम है भू भुवः स्वः मह जनः तपः और सत्यम। इनमें से प्रथम 3 अनित्य हैं। मह नित्य भी है और अनित्य भी। अंतिम 3 नित्य है। इनमें अंतिम ब्रह्मलोक है, इसे ही सत्यलोक भी कहते हैं। यही वैराज लोक भी है। इसमें प्रयुक्त छंद का नाम है अनुष्टुप। शब्दार्थ एषः यह महिमा महत्व महत बहुत बड़ा उपकृतम उपकार किया गया है। टीका अन्वेष्टव्य इति एषः संप्रति अनुभूयमानः महिमा महात्म्यम वैराज लोक प्राप्ति रूपम दिव्य देहावाप्ति रूपं च महत अत्यर्थम उपकृतम उपकारः कृतः। टिप्पणी अथवा तपसा शम्बुक के चले कहने का अभिप्राय यह है कि यदि मैंने तपस्या प्रारंभ न की होती तो आप मेरा वध करने न आते। यदि आपके हाथों मेरा वध न होता तो मुझे दिव्य लोक तथा दिव्य शरीर की प्राप्ति न होती। अतः तपस्या ने मेरा बड़ा उपकार किया है।
श्लोक नंबर 13 पृष्ठ संख्या 148। अन्वेष्टव्यो यदसि भुवने लोकनाथ शरण्यो ममान्विषे अन्निहं वृषलकं योजनानां शतानि कान्त्वा प्रान्त शैव तपसः संप्रसादौ अन्यथा तु क्वायुवध्ययाः पुनरुगमो दण्डकायां वने वः।
राम
किं नाम दण्डकेयं ब्रकट सर्वतोऽवलोक्य ब्रकट बन हा कथम। हिंदी त्रिलोकी में ढूंढने योग्य अर्थात त्रिलोकी में जिसका दर्शन करने के लिए लोग ढूंढते हैं प्राणियों के स्वामी शरण में आए हुए व्यक्तियों की रक्षा करने वाले आप जो मुझ शूद्र को ढूंढते हुए सैकड़ों योजन मार्ग लांघ कर यहाँ आए हुए हैं यह तपस्या का ही फल है। नहीं तो आपका अयोध्या से यहाँ दंडक वन में फिर आना कैसे संभव था।
राम
क्या यह दंडक वन है। चारों ओर देखकर हाय किस प्रकार।
अन्वय
भुवने अन्वेष्टव्यः भूतनाथः शरण्यः त्वं यतमां वृषलकम् अन्विष्यन् योजनानां शतानि क्रान्त्वा इह प्राप्तः असि सः तपसां संप्रसादः वर्तते अन्यथा तु वः अयोध्यायाः इह दण्डकायां वने पुनः उपगमः क्वः।
शब्दार्थ
भुवने संसार में त्रिलोकी में अन्वेष्टव्यः ढूंढने के योग्य भूतनाथः प्राणियों के स्वामी शरण्यः शरण में आए हुए व्यक्तियों के रक्षा करने वाले त्वम आप यत जो माम मुझ वृषलकम शूद्र को अन्विष्यन् ढूंढते हुए योजना नाम योजनों के शतानि सैकड़ों को क्रांत्वा लांघ कर इह यहाँ प्राप्त आए हुए असी हो सह वह यह तपसाम तपस्या का संप्रसाद अनुग्रह फल वर्तते है, अन्यथा नहीं तू तो वह आपका अयोध्या अयोध्या से इह यहाँ दंडकायाम दंडक वन में वने वन में पुनः फिर उपगमन आना क्व कहाँ से कैसे संभव था। टीका कियद्वि तपसा उपकृतम एतदैव विवृणोति अन्वेष्टव्यः इति भुवने त्रिलोकयाम अन्वेष्टव्यः श्रवण मननादिभिः साक्षात्करणीयः भूतनाथः भूतानाम प्राणिनाम नाथ स्वामी अतएव शरण्यः शरणे शरणे साधुः शरण्यम् आश्रय आश्रयणीय त्वम् इति शेषः यत् यस्मात् त्वाम् इत् पूर्वमध्यन अतप्रिया अभिप्रायः वृषलकम् शूद्राधम अत्र कुत्सायाम् कन अन्विष्यन विचिन्यन्वन योजनानाम सतानि चतुस्त कोश परिमितम् मार्गम इत्यर्थः। पृथिव्याम् तप्यते तपः इति वचनम् श्रुत्वा इतस्ततः परिभ्रम्य तत्र प्राप्तो अद्धो जनानाम् सतानीति संगक्ष्यते क्रांत्वा उलंघ्य इह अत्र प्राप्त आगतः असि वर्तते। सह तपसाम् तपस्यानाम् संप्रसादः अनुग्रह फलमिति यावत् वर्तत इति शेषः, अन्यथा इतरथा तु च वह भवताम् अयोध्यायाः राजधान्याः इह अत्र दण्डकायाम् वने दण्डकारण्ये पुनः मुहु उपगमः प्राप्तिः आगमन्निति भावः क्व कुतः न सम्भवेद इत्यर्थः। अतस्तपसा मह उपकृतमिति वक्तुम् शक्यते। अत्र विषमः काव्यलिङ्गचा अलङ्कारौ मदक्रांता छन्दः टिप्पणी अन्वेष्टव्यः अनुप्लस विस इस गतौ प्लस तव्यत प्लस विभक्तिकार्यम् शरण्यः शरण प्लस यत प्रत्यय विभक्तिकार्यम् अन्विष्यन् अनुपसर्ग विस धातु इस धातु सर्तृप्रत्यय विभक्तिकार्यम् कान्त्वा क्रम धातु कत्वा प्रत्यय उपगमः उपसर्ग गम धातु अपप्रत्यय विभक्ति कार्यम योजनानाम सतानि सैकड़ों योजन एक योजन चार कोष का होता है। यद्यपि अयोध्या और दंडकारण्य की दूरी इतनी अधिक न थी परंतु आकाशवाणी ने शंभुको नाम वृषलः पृथिव्याम तप्यते तपः कहा था, अतः राम उसे इधर उधर खोजते हुए ही वहां पहुंचे थे, इसलिए उन्हें सैकड़ों योजन का चक्कर लगाना पड़ा था। इस श्लोक में विषम एवं काव्यलिंग अलंकार तथा वसंतालिका छंद है। छंद का लक्षण उक्ता वसंतील का तवजा जगौगह। श्लोक नंबर 14 पृष्ठ संख्या 150 स्निग्धस्यामाह क्वचिद परतो भीषण भोगरुक्षा स्थाने स्थाने मुखरकुंकुभो झांकृतैरनिर्झराणाम् एते तीर्थाश्रम गिरिशरिदः गर्तक्रांत रामिश्रः संदृश्यन्ते परिचितं भू दंडकारण यभागः।
हिंदी कहीं मनोहर तथा हरे भरे दूसरी ओर भीषण विस्तार के कारण रूखे अर्थात उद्वेगजनक स्थान स्थान पर झरनों की झरझर ध्वनियों से झंकृत दिशाओं से युक्त तीर्थाश्रम पर्वत नदी गड्ढे और दुर्गम भागों से मिश्रित परिचित भूमि वाले ये दंडकारण्य के प्रदेश दिखलाई पड़ रहे हैं। अन्वय क्वचित स्निग्धास्यामाह अपरतः भीषणा भोगरुक्षा स्थाने स्थाने निर्झराणाम झांकृतैः मुखर कुंभ तीर्थाश्रम गिरि सरिद गर्त क्रांत मिश्रः परित चितभुवो एते दंडकारण भागाः सदृश्यन्ते। शब्दार्थ क्वचित कहीं स्निग्ध श्यामाह चीकने अर्थात मनोहर तथा हरे भरे अपरतः दूसरी ओर भीषणा भोग रुक्षाह भीषण विस्तार के कारण
रूखे अर्थात विद्वेग जनक स्थान 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 पर निर्झराणाम झरनों की झंकृत झरझर ध्वनियों से मुखर कुंभ झंकृत दिशाओं से युक्त तीर्थाश्रम गिरी सरिद गर्त कांतार मिश्रा तीर्थ आश्रम पर्वत नदी गड्ढे और दुर्गम मार्गों में मिश्रित परिचितम भूव परिचित भूमि वाले एते ए दंडकारण्य भागा दंडकारण्य के प्रदेश सदृश्यन्ते दिखलाई पड़ रहे हैं। टीका अथ इदानीं दंडकारण्यस्य पूर्व परिचितत्वं प्रतिपादयत्ना स्निग्धति क्वचिद कुत्रचितम् स्निग्धस्यामाः स्निग्धाः मसृणाः नेत्र प्रतीकराः सौम्य दर्शन इति यावत् तथा स्यामाः श्याम वर्णाः अपरतः अन्यस्याः दिशि प्रदेशे वा भीषणा भोगरुक्षाः भीषणाः भीतिजनकः यः अभोगः परिपूर्णता अभोगः परिपूर्णता इत्यमरः असीम विस्तारः इति यावत् तेन रुक्षाः चित् विक्षोभकराः स्थाने स्थाने यत्र कुत्रचित् निर्झराणाम् पर्वताद्य पतितानाम् वारिण प्रवहनाम् वारि प्रवाहो निर्झरो झरः इत्यमरः झाङ्कृतैः झर्झर ध्वनिभिः मुखरकुम्भः मुखराध्वनिताः कुकुभः दिशः दिशस्तु ककुभः काष्ठा इत्यमरः यासु तथोक्ता तीर्थाश्रमत्यादि तीर्थानि ऋषिमुनि सेवितजलानि संयुक्तः स्थानानि तथा चोदधृतम् जीवानन्द विद्या सागरेण प्रभावादद्भुता भूमेः सलिलस्य च तेजसाम् परिग्रहान्मुनीनाञ्च देशानाम् तीर्थाता स्मृता इति आश्रमाः मुनीनाम निवासाः गिरयः पर्वताः सरितः नद्यः कर्ताः कृदन्यः खतान्यवटाः आगर्दः इत्यर्थः गर्भ इति क्वचित् पाठः तदर्थस्तु ताः गर्भे अन्तराले येषाम् तथा विद्याः तैमिश्राः युक्ताः परिचितभूव परिचिता पूर्ववनवासकाले अनुभूता भूः पृथिव्या येषाम् तथोक्ता एते इमे सन्मुखस्याः इति यावत् दण्डकारण्यभागाः दण्डकारण्यस्य दण्डकवनस्य भागाः प्रदेशाः सन्दृश्यन्ते अवलोकयन्ते मयेति शेषः अत्र स्वभावलोक्यक्त्यलङ्कारः मदान्तक्रान्ता छन्दः। टिप्पणी किं नाम दण्डक्येयम् रामचन्द्र ने पुष्पक विमान से कहा था हमें उस स्थान पर ले चलो जहाँ शंभुक तप कर रहा है। पुष्पक उन्हें यहाँ ले आया है। घबराहट में उन्हें यह ज्ञात न हो सका कि वे संप्रति कहाँ से कहाँ है। अतः जब शंभुक ने दंडकारण्य का नाम लिया तो वे चौंक पड़े। उन्हें पुरानी बातें याद हो आई। स्निग्ध स्नेह कथा प्रत्यय विभक्ति कार्यम वहाँ के पत्ते पर्याप्त हरित थे। हरियाली हिलोरी ले रही थी। अतः वहाँ के प्रदेश चीकने अतः मनोहर प्रतीत हो रहे थे। आभोगः आ भुज धातु घय प्रत्यय विभक्ति कार्यम किसी स्थान की लंबाई चौड़ाई का को आभोग कहते हैं। इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार तथा मदक्रांता छंद है। छंद का लक्षण मदक्रांताम्बुधेरशनगैर्मो भनौतौ गयुग्ममम् श्लोक नंबर 15 पृष्ठ संख्या 152। शम्बुकः दण्डकैवैषा अत्र कील पूर्व निवसता देवेन चतुर्दश सहस्राणि राक्षसां भीमकर्मणां त्रयश्च खरदूषणत्रे मूर्धानो रणिहताः येन सीध क्षेत्रे अस्मिनामास आदृशामपि जानम अपादानं कुतो अभयः संचारः संभवतः। राम न केवलं दण्डकैव जनस्थानमपि शम्बुक बाढ़ एतानि खलु सर्वभूतरोहमहर्षणान्यून उन्मतचण्डस्वापः उलूक अकुलात्क्रान्तः विकटगिरिहराणिः जनस्थानपर्यन्त दीर्घराणि दक्षिणामदिशम् अभिवर्तते तथा हि। हिंदी
शंबुक, यह दंडक वन ही है। यहीं पहले निवास करने वाले महाराजा के द्वारा भीषण कार्य करने वाले 14,000 राक्षस तथा 3 दूषण खर और त्रिशिरा युद्ध में मारे गए थे, जिससे सिद्धों के इस क्षेत्र में मेरे जैसे नागरिक का भी निर्भय भ्रमण संपन्न हो सका है। राम, यह केवल दंडकारण्य भर ही नहीं अपितु जनस्थान भी है। शंबुक, हाँ, संपूर्ण प्राणियों को रोमांच पैदा करने वाले मतवाले तथा भयंकर हिंसक प्राणियों के समूह से व्याप्त पर्वत की विकट कंदरा वाले जनस्थान की सीमा पर विराजमान विशाल जंगल दक्षिण दिशा की ओर फैले हुए हैं, जैसे कि अन्वय भीमकर्मणाम रक्षसाम चतुर्दश सहस्त्राणि च त्रयः दूषण खर त्रिमूर्धान रणे हताः। शब्दार्थ, भीमकर्मणाम भीषण कार्य करने वाले रक्षसाम राक्षसों का चतुर्दश 14,000 च और त्रयः 3 दूषण खर त्रिमूर्धान दूषण खर और त्रिशिरा रणे युद्ध में हताः मारे गए थे। टीका, भगवता पूर्वम कृतम अद्भुतम कर्म स्मारयति चतुर्दशेति भीमकर्मणाम भीमं हृदय विदारकम कर्म प्राणहिंसा नादिरूपम कृत्यम हे एसाम ते एतेसाम तथा विदानाम रक्षसाम राक्षसानाम 14,000 च तथा त्रयः त्रिसंख्या दूषण खरः त्रिमूर्धान दूषण प्रभृतयः द्रणे युद्धे हताः मारिताः दूषण खरः त्रिमूर्धाः नः रणे हताः इति पाठे नः अस्माकं रणे हताः अथवा रणे न हताः किं युद्धे न मारिताः इति क्वा अपि तु हता एवेति व्यज्यते अत्रा अनुष्टुप छन्दः। टिप्पणी, त्रिमूर्धानो रणे त्रयोः मूर्धानो यस्य सः यद्यपि द्वित्रिभ्यः सः मूर्धनः, इस सूत्र में के अनुसार समासांत स होकर त्रिमूर्ध रूप होना चाहिए तथा समास करने पर दूषण खर त्रिमूर्धा होना चाहिए, किंतु समासांत विधि को अनित्य मानकर त्रिमूर्धा त्रिमूर्धन यह पद बनता है और समास के त्रिमूर्धान ऐसा बनेगा। अन्य अर्थों के लिए देखिए टीका, हताह मारे गए हन धातु कत प्रत्यय विभक्ति कार्यम, इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। शब्दार्थ, सीध क्षेत्रे सीधो के क्षेत्र में मादृशाम मेरे जैसे जानपदानाम नागरिकों का अकूतो भय निर्भय संचार भ्रमण संवृत संपन्न हो सका है। टीका, येन इति येन खरदूषणादिनाम निधनेत्यर्थः सिद्ध क्षेत्रे सिद्धानाम अधिगत अधिकरणाम त्रे प्रदेशे मादृशाम मत्सदृशानाम साधारण जनानाम इत्यर्थः जनपदानाम जनपदे नगरे जातनाम उत्पनानाम नगर निवासनाम इत्यर्थः अकूतो भये नास्ति कुतो अपि भयम् यस्मिन् तादृशी निर्भय इति यावत् संचार भ्रमणम् संवृतम् संपन्नम्। टिप्पणी, संचार विचर विचरण भ्रमण सम उपसर्ग चर धातु घय प्रत्यय विभक्ति कार्यम संवृत सम उपसर्ग वृत धातु कथ प्रत्यय विभक्ति कार्यम। शब्दार्थ, बाढ़ यह स्वीकार सूचक अव्यय है, इसका अर्थ होता है हाँ टीका है ठीक है। सर्वभूतरूप अमरहर्षणानी संपूर्ण प्राणियों को रोमांचक पैदा करने वाले उन्मत चंड स्वाप पदह कूलाक्रांत विकटाग्री हरणी मतवाले तथा भयंकर हिंसक प्राणियों के समूह से व्याप्त पर्वत की विकट कंदरा वाले जनस्थान पर्यंत दीर्घारण्यानी जनस्थान की सीमा पर विद्यमान विशाल जंगल। टीका, बाढ़म इति बाढ़ स्वीकार सूचक अव्यय पदम एतत सर्वभूतेति सर्वाणि निखिलानि च तानि भूतानि प्राणिनि तेषां रोमहर्षणानि रोमांचकारणानि उन्मतेत इत्यादि उन्मताः बतबिहवलाः चण्डाः भीषणाश्च ते स्वापदाश्च हिस्न पश्वस्तेषां कुलैः समूहैः अक्रांतानि व्याप्तानि विकटानि व्यंजनानि भयव्यंजनानि व्यंजक जनकानि ग्रीगहरणानि पर्वत कंदराणि येषु तथोक्तानि जनस्थानेति जनस्थानस्य जनस्थान नामनो अरण्य भागस्य पर्यन्तेषु सीमसु दीर्घाणि महन् महान्ति यानि अरण्यानि जंगलानि टिप्पणी बाढ़ वह आपलस्कत विभक्ति कार्यम उन्मत उद मत कत विभक्ति कार्यम